restaurant.
तो 21वां अध्याय हम लोग ले रहे हैं और अध्याय का शीर्षक है श्री कृष्ण के गुण। पिछले अध्याय के अंतिम छोर में हमने बताया था कि कृष्ण जो है विषय है भाव भक्ति के, और इस प्रकार से कृष्ण नाना रूप प्रकट करते हैं और अपने भक्तों के लिए विषय बन जाते हैं। भक्त आश्रय है और श्री कृष्ण क्या है, विषय है। श्री रूप गोस्वामी सबसे पहले अन्य रूप का वर्णन कर रहे हैं कि इसका अर्थ यह है कि कृष्ण नाना प्रकार के रूप लेते हैं अपने भक्तों के भाव का पोषण करने के लिए। जैसे ब्रह्म विमोहन लीला में कृष्ण नाना प्रकार के रूप लिए, वो सखा बने, बछड़े बने और ग्वाले बने, यानी कि तो इसी तरह से अन्य रूप धारण किए। और इस तरह से यहाँ तक कि बलराम जी के लिए भी वो एक प्रेम का विषय बन गए। तो इस ब्रह्मलीला में स्वयं कृष्ण आश्रय भी हैं और विषय भी हैं। अब जिस अध्याय है, आज का जो अध्याय है 21वां अध्याय है, जिसमें श्री कृष्ण गुण के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, इसमें स्वरूप के बारे में वर्णन किया गया है। स्वरूप का मतलब है कि अपने ही रूप के द्वारा भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं। स्वरूप, स्वरूप का मतलब क्या है, अपना ही रूप। और स्वरूप में दो विभाग हैं, पहला है आवृत रूप और दूसरा है प्रकट रूप। आवृत रूप, आवृत रूप का मतलब है कि वेश बदलकर या छुपे रूप में प्रकट होते हैं, उसको कहते हैं आवृत रूप। और प्रकट रूप का मतलब यह है जिसमें उनका पूरा रूप प्रकट होता है, पूरा रूप प्रकट होता है। क्योंकि ये जो वर्णन किया जा रहा है, जो पहले हमने प्रारंभ किया था विभाव के बारे में हम लोग परिभाषा दे रहे थे, तो उसी को आगे लिखते हुए इस विषय का वर्णन किया जा रहा है, जिसमें विभाग में हमने दो विभाग किए थे, एक तो था आलंबन और दूसरा था क्या, उद्दीपन। तो विभाग आलंबन में विषय आश्रय की हमने चर्चा की थी, तो उसी विषय के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, श्री कृष्ण के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और आने वाले अध्याय में हम देखेंगे कि आश्रय के बारे में भी चर्चा करेंगे श्री रूप गोस्वामी। तो इस प्रकार से लगभग तीन अध्यायों में श्री रूप गोस्वामी ने श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन किया है। और ये जो यहां पे आज वर्णन करने जा रहे हैं, इसको आवर्त रूप कहते हैं। कृष्ण जो है वो छुपे हुए रूप में, डिस्गाइज में, जिसको कहते हैं। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि जब कृष्ण जो है नाना प्रकार के वस्त्रों के द्वारा ढक जाते हैं, उनका जो अपना रूप है वो छुप जाता है, उसको कहते हैं आवृत रूप। उद्धव जी कहते हैं श्रीमद् भागवत में एक जगह वर्णन आता है कि कितना आश्चर्य है कि ये जो स्त्री है मुझे आकर्षित कर रही है और मेरे इस भक्ति को, प्रेम भक्ति को आगे बढ़ा रही है, जिस तरह से ऐसा लग रहा है कि मैं तो कृष्ण को देख रहा हूं। तो वो कई बार कृष्ण जो है वेश बदल कर आते हैं, लेकिन भक्त जो है वो उनको पहचान जाते हैं। जिस तरह से एक बार श्री कृष्ण की इच्छा हुई कि राधारानी के चरणों का वो क्या करें, श्रृंगार करें, राधारानी के चरणों की सेवा करें, तो इस प्रकार की भावना को लेकर श्री कृष्ण ने अपना वेश बदला और एक कुंज में प्रवेश करने का प्रयास किया। तो वहां पर उनसे पूछा गया, रोका गया, जैसे आपने देखा होगा वहां पर परिक्रमा मार्ग में भी कई पेंटिंग्स हैं, और उसमें एक पेंटिंग में दिखाया हुआ है कि श्री कृष्ण जो है उन्होंने वेश बदला हुआ है और श्रीमती राधारानी के चरणों में, चरणों की सजावट कर रहे हैं। तो वो जब अंदर प्रवेश किया, उन्होंने कुंज में प्रवेश किया, तो उनसे पूछा कि आप कौन हो और कहां से आए हो। तो उन्होंने कहा मेरा नाम तो नवीना गोपी है और मेरी इच्छा है कि मैं राधा रानी के चरणों का श्रृंगार करूं, उनकी सजावट करूं, उनकी सेवा करूं। तो कहा ठीक है, हमें पहले राधा रानी से पूछ लेते हैं। तो राधा रानी से उन्होंने पूछा, कहा ठीक है। वो कहते कृष्ण की इच्छा थी कि राधा रानी के चरणों में उनको स्थान मिल जाए। तो किसी ने उनको सुझाव दिया था कि अगर आप राधा रानी के चरणों में अपना नाम लिखते हैं तो फिर क्या होगा, आप में और नाम में कोई भेद नहीं है। श्री कृष्ण को ये श्लोक का स्मरण हुआ, क्या नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो भिन्नत्वा नाम नामिनो। ये नाम और नामी में कोई भेद नहीं है, ये पूर्ण शुद्ध है और पुण्य पूर्ण रूप से मुक्त है। तो इस प्रकार श्री कृष्ण जो है क्या करते हैं, और राधारानी के चरणों में अपना नाम लिखते हैं, श्याम करके लिखते हैं। और जैसे ही वो नाम लिखते हैं तो क्या होता है, श्री कृष्ण के हाथ कांपने लगते हैं और सारा रंग फैल जाता है। राधा रानी को क्रोध आता है और अपने चरणों से वो कृष्ण को धक्का दे देती हैं छाती पे मारकर। तो इस तरह से कृष्ण जो है अपने आप को बहुत ज्यादा सौभाग्य समझते हैं कि राधा रानी के चरण के ऊपर पड़ गए, लेकिन बाद में पहचाने जाते हैं कि ये तो कृष्ण थे। तो इस तरह से इसको कहते हैं आवृत रूप, आवृत रूप में आते हैं कृष्ण, ढके हुए रूप में आते हैं। और दूसरे यहां प्रकट रूप, तो प्रकट रूप यानी कि अन्य रूप का मतलब पहले क्या बताया हमने कि अन्य रूप का मतलब है बिल्कुल ही अलग विस्तार, कृष्ण का बिल्कुल अलग विस्तार, जैसे ग्वालों के रूप में और बछड़ों के रूप में प्रकट हुए, उसको कहते हैं अन्य रूप। ये है स्वरूप, और स्वरूप में भी एक है आवृत रूप और एक है प्रकट रूप। आवृत रूप में स्वयं कृष्ण ही है, उनका अपना ही कृष्ण का स्वरूप है, लेकिन वो स्वरूप ढका हुआ है वेशभूषा के कारण या श्रृंगार के कारण ढका हुआ है। और प्रकट रूप में मतलब यह है कि कृष्ण यथारूप प्रकट हुए हैं, यथारूप प्रकट हुए। उदाहरण के तौर पर एक भक्त ने प्रशंसा की कृष्ण के सौंदर्य की, प्रशंसा की, क्या कहते हैं कि कितना सुंदर स्वरूप है श्री कृष्ण का, उनके जो उनके उनके क्या गले की बात गर्दन कंठ है, गर्दन की व्याख्या कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये तो शंख के समान है, उनकी आंखें इतनी सुंदर हैं और ऐसा लगता है कि ये कमल के सदृश हैं। तो इस प्रकार से एक भक्त प्रशंसा कर रहे हैं कृष्ण की सुंदरता की, प्रशंसा कर रहे हैं। तो इसको कहते हैं प्रकट रूप, हाँ प्रकट रूप, कृष्ण की सुंदरता का सीधा वर्णन करना कृष्ण का दर्शन करने मात्र से ही। और उसके बाद आगे यहां पर क्या बता रहे हैं श्रील रूप गोस्वामी, यहां पर बताया गया कृष्ण के 64 गुणों के बारे में। श्री रूप गोस्वामी ने अनेक शास्त्रों का परिशीलन करने के बाद भगवान के दिव्य गुणों को गिनाया है, जो इस प्रकार है। तो इसमें तो 64 गुणों का वर्णन किया गया है, क्योंकि हम लोग 64 गुणों का वर्णन करने वाले हैं, तो सारे गुणों का अभी नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, एक एक करके हम लोग पढ़ते जाएंगे और 64 गुण इस प्रकार से पूरा करेंगे। भगवान में ये 50 देवी गुण समुद्र की अगाधता के समान पाए जाते हैं। दूसरे शब्दों में उनके गुणों की सीमा अचिंत है। यहां पर क्या कर रहे हैं कि 64 गुणों को इन्होंने अलग अलग भागों में बांटा है। सबसे पहले 50 दिव्य गुणों का वर्णन किया है कि कृष्ण के पास ये जो 50 दिव्य गुण है वो क्या है, अगाध, समुद्र की अगाधता के समान है, कोई सीमा नहीं है। लेकिन यही 50 दिव्य गुण जो है आंशिक रूप में जीव में पाए जाते हैं। हम जैसे जीव हैं, 50 देवी गुण जो है वो जागृत कर सकते हैं, हमारे पास है, लेकिन जो नित्य परिकर हैं, भगवान के नित्य परिकर हैं गोलोक में या वैकुंठ में, उनके पास 55 दिव्य गुण होते हैं, लेकिन जो तटस्था शक्ति जीव हैं वो 50 दिव्य गुण जागृत कर सकते हैं। नित्य सिद्ध जीव जो होते हैं, जो गोलोक से आते हैं, जैसे हमारे पूर्ववर्ती आचार्य लोग, इनके पास 5 अतिरिक्त दिव्य गुण हैं जो हमारे पास नहीं है। और इसके बाद आगे बता रहे हैं, भगवान के अंश रूप में वेष्टि जीवात्मा में भी ये सभी गुण हो सकते हैं, किंतु कम मात्रा में। और वह भी यदि वे भगवान के शुद्ध भक्त बन जाएं, तब जब हम सब शुद्ध भक्त बन जाएंगे तब ये 50 दिव्य गुण जागृत होंगे। तो इन गुणों का हम लोग अध्ययन कर सकते हैं रोज, और अपने परख सकते हैं कि ये गुण जागृत हो रहे हैं कि नहीं। एक तो 26 गुण बताए गए हैं वैश्व सदाचार का जब अध्ययन करते हैं, लेकिन 50 दिव्य गुण हैं ये, तो एक एक करके हम टिक कर सकते हैं कि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। और उसके बाद हम लोग निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हम लोग क्या है, नित्य बद्ध हैं। तो बद्ध अवस्था में ये गुण प्रकट नहीं होते, और जैसे जैसे हम मुक्त होने लगते हैं तो ये सारे दिव्य गुण प्रकट होने लगे, ये यहां पर बताया गया। दूसरे शब्दों में ये सभी दिव्य गुण भक्तों में कम मात्रा में पाए जा सकते हैं, जबकि संपूर्ण गुण भगवान में सदैव विद्यमान रहते हैं। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य दिव्य गुण भी हैं जिनका वर्णन पद्म पुराण में शिवजी ने पार्वती से किया है, और कुछ श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में पृथ्वी देवी एवं धर्म के राजा यमराज की वार्ता में प्रसंग में आए हैं। उसमें कहा गया है, जो लोग महापुरुष बनना चाहते हैं उन्हें निम्नलिखित गुणों से विभूषित होना चाहिए। मतलब ये अगर गुण हैं किसी महापुरुष के पास तो ये करीब कितने हैं, 32 हैं शायद, या जितने भी हैं। लेकिन ये कोई अगर महापुरुष बनना चाहता है, कोई महाजन कहलाना चाहता है अपने आप को, तो उसके पास ये सारे गुण होने चाहिए। सत्यवादिता, स्वच्छता, दया, दृढ़ प्रतिज्ञता, त्याग, शांति प्रियता, सरलता, इंद्र निग्रह, मानसिक संतुलन, तप, समता, सहनशीलता, शांति, विद्वत्ता, ज्ञान, विरक्ति, ऐश्वर्य, वीरता, प्रभाव, शक्ति, स्मृति, स्वतंत्रता, चातुर्य, कांति, धीरज, कोमलता, विदग्धता, भद्रता, शालीनता, संकल्प, सर्व ज्ञान संपन्नता, समुचित कार्यान्वयन, भोग की सारी वस्तुओं का स्वामित्व, गंभीरता, स्थिरता, आज्ञाकारिता, यश, आदरशीलता तथा मिथ्या अहंकार का भाव। जो लोग महान बनना चाहते हैं वे इन गुणों के बिना नहीं बन सकते। अतएव यह निश्चित है कि ये गुण परमात्मा श्री कृष्ण में अवश्य पाए जाते हैं। तो भगवान में तो ये अवश्य पाए जाते हैं, लेकिन कोई अगर जीव महात्मा बनना चाहते हैं तो ये सारे गुण होने चाहिए, ठीक है। उपर्युक्त 50 गुणों के अतिरिक्त भगवान कृष्ण में 5 गुण और भी पाए जाते हैं, जो कुछ कभी कभी साक्षात ब्रह्मा या शिवजी में भी अंशतः प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी शिवजी में 55 दिव्य गुण पाए जाते हैं, और साधारण जीवों में कितने हैं, 50 दिव्य गुण पाए जाते हैं, ठीक है। उपर्युक्त 50 गुणों के अतिरिक्त भगवान कृष्ण में 5 गुण और भी पाए जाते हैं, जो कभी कभी साक्षात ब्रह्मा या शिवजी में भी अंशतः प्रकट होते हैं। जय धर्म में भक्ति ठाकुर ने वर्णन किया है कि सूर्य और इंद्र और शायद गणेश जी भी, इनके पास भी कुछ अतिरिक्त गुण हैं, 5 दिव्य गुण अतिरिक्त हैं इनके पास, लेकिन मात्रा के हिसाब से कम है, ठीक है। और ये 5 अतिरिक्त दिव्य गुण क्या हैं, परिवर्तन रहित, सर्वज्ञ, चिर नूतन, सच्चिदानंद, सदैव नित्य आनंदमय शरीर वाले, समस्त योग सिद्धियों से युक्त। तो ये 5 दिव्य गुण बताए हैं। श्री कृष्ण में 5 गुण और भी होते हैं जो नारायण के शरीर में प्रकट होते हैं। तो श्री कृष्ण में तो 64 दिव्य गुण है, लेकिन किसी में 50 गुण प्रकट हो रहे हैं आंशिक रूप में, और भगवान में तो 5 और अतिरिक्त गुण प्रकट हो रहे हैं। ब्रह्मा जी शिव जी में 5 अतिरिक्त गुण प्रकट हो रहे हैं आंशिक रूप में, भगवान में और 5 अतिरिक्त गुण प्रकट हो रहे हैं, और भगवान श्री नारायण में पांच गुण क्या है, उनके शरीर से असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, असंख्य ब्रह्मांड। समस्त अवतारों के मूल उद्गम में वे ही हैं। वे अपने द्वारा मारे गए शत्रुओं को भी मुक्ति देने वाले हैं। वे मुक्त आत्माओं के लिए आकर्षक हैं। ये सारे दिव्य गुण कृष्ण के साकार स्वरूप में अद्भुत ढंग से प्रकट होते हैं। ठीक है, इन 60 दिव्य गुणों के अतिरिक्त श्री कृष्ण में 4 गुण पाए जाते हैं जो देवताओं या जीवों में तो क्या स्वयं नारायण रूप में भी नहीं होते। यानी कि 4 ऐसे गुण हैं, दिव्य गुण हैं, जो केवल श्री कृष्ण के पास पाए जाते हैं, जो भगवान नारायण के पास भी नहीं है। और इन 4 अतिरिक्त गुणों के कारण ही गोपियां भी या ब्रजवासी वो कृष्ण से आकर्षित रहते हैं। ये जो 4 अतिरिक्त गुण दिव्य गुण हैं, द्वारकाधीश में भी नहीं पाए जाते हैं, ये वासुदेव कृष्ण में भी नहीं पाए जाते हैं। ये जो कुछ ऐसे 4 अतिरिक्त दिव्य गुण हैं जो केवल श्री कृष्ण में ही पाए जाते हैं ब्रज में, जिसका वर्णन यहां पर किया गया है। तो पहले यहां पर बताया गया है 64 दिव्य गुणों में लीला माधुर्य, 4 प्रकार के हैं, लीला माधुर्य, प्रेम माधुर्य, वेणु माधुर्य और रूप माधुर्य। ये 4 अतिरिक्त दिव्य गुण हैं जो खास तौर से विशेष रूप से श्री कृष्ण में पाए जाते हैं। तो इसलिए श्री कृष्ण जो वृंदावन में है वो पूर्णतम है और मथुरा में क्या है, पूर्णतर है, और द्वारका में पूर्ण है। श्री कृष्ण ब्रज में पूर्णतम है। तो लीला माधुर्य के बारे में बताया गया है। लीला माधुर्य, अनेकों लीलाएं भगवान श्री कृष्ण करते हैं और ऐसी ऐसी अद्भुत लीलाएं करते हैं जिसको देखने मात्र से देवता लोग भी चकित हो जाते हैं। खास तौर से जो कृष्ण बाल लीलाएं करते हैं, ये जो बाल लीला है देखकर बड़े बड़े देव देवता भी मोहित हो जाते हैं। क्योंकि ये जो बाल लीलाएं हैं ये भूम वृंदावन में प्रकट होती हैं। गोलोक वृंदावन में श्री कृष्ण जो है किशोर अवस्था में रहते हैं, लेकिन बाल लीला यहां प्रकट करते हैं। और सबसे जो मधुर लीला है, लीला माधुर्य, श्री कृष्ण की रास लीला है, जो अपने भक्तों के साथ वो आनंद लेते हैं। और इस रास लीला का दर्शन करने के लिए समस्त ब्रह्मांड के देवी देवता जो है एकत्रित होते हैं। एक भक्त कहता है कि मैं तो नारायण के बारे में जानता हूं, वो लक्ष्मीपति हैं, और कई अवतारों के बारे में जानता हूं। ये सारे अवतार जो है मेरे मन को आकर्षित करते हैं, लेकिन जब श्री कृष्ण रासलीला करते हैं तो क्या होता है, एक अलग ही दिव्य आनंद की मुझे अनुभूति होती है। इस रासलीला का जब मैं दर्शन करता हूं, अनंत कोटि गोपियों के साथ महाराज करते हैं। जैसे कि कार्तिक का जो पहला दिन है, कार्तिक मास का पहला दिन है, उसको शरद पूर्णिमा कहा गया है। शरद पूर्णिमा के दिन श्री कृष्ण मास रास करते हैं वंशी वट में। इस प्रकार अनंत कोटि गोपियां जो है श्री कृष्ण के साथ होते हैं। और एक ऐसे महाराज में तो 100 युद्ध होते हैं और एक एक युद्ध में 100 करोड़ गोपियां होती हैं, ऐसा गर्ग संहिता में वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार अंदाजा नहीं लगा सकते, हमारी कल्पना से परे हैं कि इतनी सारी गोपियां कहां से हैं। और इतना ही विस्तार श्री कृष्ण अपना कर रहे हैं और इनके साथ महाराज कर रहे हैं, जो हमारी कल्पना से परे है। तो किसी ने कहा कि आपके भगवान कैसे हैं, ये तो इतने सारे गोपियों के साथ महाराज कर रहे हैं, क्यों ना करें वो? क्योंकि वो ही वास्तव में क्या है, महेश्वरम। गीता भगवान कहते हैं भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, उन्हीं का ही है सब कुछ। जब उन्हीं का है सब कुछ तो वही भोगता है। जब आपका कुछ होगा ही नहीं तो आपको उसका आनंद लेने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आप उसको भोगने का प्रयास करेंगे तो आपको चोर बोला जाएगा, आपको पकड़ लिया जाएगा पुलिस के द्वारा। किसी की संपत्ति आप हर नहीं हो सकते हैं, आपके लिए जो छोड़ा गया है उसको आप ले सकते हैं। तेन भुंजिता मागृत कस्य स्वधनम, जो आपके लिए छोड़ दिया गया है। जैसे भक्त लोग प्रसाद लोग कई बार छोड़ देते हैं और कुछ भक्त उसको प्रसाद को लेते हैं, ग्रहण करते हैं महाप्रसाद के रूप में, उच्चिष्ट जिसको कहते हैं। तो हम लोगों के लिए उच्चिष्ट छोड़ा गया है, तो जो उच्चिष्ट छोड़ा गया है उसी को हम ग्रहण कर सकते हैं। तेन त्यक्तेन भुंजिता, नहीं तो क्या है, ईशावाशम इदम सर्वम यत्किंचित जगत त्याम जगत, सब कुछ भगवान का है। जो सब कुछ भगवान का है तो फिर ये फिर इन गोपियों का क्या कहना। तो एकमात्र भोगी, एक भोगी केवल एक कृष्ण ही है, बाकी सब भोगे हैं। तो 16,108 पटरानियां क्या है फिर, पूरा ब्रह्मांड ही उनका है, वो किसी के साथ भी राज कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये उनकी उनका लीला माधुर्य है जो वृंदावन में प्रकट होता है। वृंदावन देखने में बड़ा छोटा सा लगता है 16 करोड़ का, लेकिन ये जो भौम वृंदावन है जो देखने में बड़ा छोटा लगता है, इसकी एक एक पंखुड़ी में अनंत कोटि वैकुंठ निवास कर रहे हैं। अब समझ रहे इस बात को, जो गोलोक वृंदावन है वो कमल सदृश है और उसकी एक एक पंखुड़ी में अनंत कोटि वैकुंठ है, और ये जो वृंदावन है केवल 16 करोड़ का है, केवल 32 माइल का है, 32 मील का है केवल, और एक एक पंखुड़ी में अनंत कोटि वैकुंठ है। और ये वैकुंठ कैसे हैं, जैसे कि आकाश में किसी एक कोने में सूर्य है, बहुत बड़ा आकाश है, किसी एक कोने में सूर्य हो तो ऐसे अनंत कोटि वैकुंठ जो है वो किसी एक कोने में है। एक वर्ण ऐसा भी मिलता है, और दूसरा वर्ण क्या मिलता है कि कमल सदृश है ये गोलोक वृंदावन और उसकी एक पंखुड़ी में अनंत कोटि वैकुंठ है। तो कितना बड़ा होगा गोलोक वृंदावन, और ये गोलोक वृंदावन जो है भौम वृंदावन देखने में लगता है केवल 16 करोड़ का है, और पूरा ब्रजमंडल जो है 84 करोड़ का है, पूरा गौड़मंडल 84 करोड़ का है, नवदीप मंडल 16 करोड़ का है। तो इसमें ये कल्पना से परे है, इसलिए इसको अचिंत्य कहते हैं। अचिंत्य यानी कि भगवान में श्रद्धा बढ़ेगी, श्रील जी गोस्वामी कहते हैं सबसे पहले हमें स्वीकार करना होगा कि भगवान का जो नाम है, उनका रूप, उनके गुण, उनकी लीलाएं, ये क्या अचिंत्य हैं, इस बात को स्वीकार करना होगा श्रद्धा से, तब हमारी जो है श्रद्धा बढ़ेगी। अचिंत्य मानना पड़ेगा, ये हमारी चिंता से परे है, हमारी इंद्रियों से परे है, इसलिए भगवान को अधोक्षज कहा गया है। और अगला बताया है प्रेम माधुर्य, प्रेम माधुर्य यानी कि कृष्ण का सौंदर्य पड़ता बढ़ता है जब उनके साथ उनके नित्य परिकर या उनके पार्षद होते हैं। कृष्ण अकेले सुंदर नहीं है, कृष्ण की सुंदरता बढ़ती है उनके भक्तों के साथ। जैसे कि यहां पर बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके पास सोने की अंगूठी है और सोने की अंगूठी में अगर आप रत्न रख दें, जेम रख दें, जेम स्टोन रख दें गोल्ड रिंग में, तो कितना आकर्षक होगा, बड़ा आकर्षक लगता है ना। सोने की अंगूठी में अगर आप जेम स्टोन लगा दें, खासकर लाल रंग का रूबी, तो रूबी जो स्टोन है अगर आप लगा दें गोल्ड रिंग में तो कितना अट्रैक्टिव लगता है। तो इसी तरह से जब कृष्ण अपने परिकरों के साथ होते हैं, भक्तों के साथ होते हैं, तब कृष्ण जो है वास्तव में सुंदर नजर आते हैं। इसलिए कृष्ण कभी अकेले होते ही नहीं है, कृष्ण सदैव अपने भक्तों के साथ होते हैं। एक बार प्रभुपाद के एक शिष्य ने एक पेंटिंग बनाया कृष्ण का, कि कृष्ण अकेले हैं, बिल्कुल अकेले बैठे हैं झूले में। प्रभुपाद बोलते हैं कृष्ण नेवर अलोन, दोबारा बनाओ, कोई मोर दिखा दो, कोई गाय दिखा दो, कोई तो साथ में खड़ा होगा, कृष्ण नेवर अलोन। इसलिए ऑल्टर में भी कृष्ण देखेंगे कभी अकेले नहीं होते। तो कृष्ण की सुंदरता बढ़ती है, कृष्ण का सौंदर्य बढ़ता है उनके जो परिकर साथ में होते हैं। श्रील रूप गोस्वामी बोलते हैं, श्रीमद् भागवत से उदित कर रहे हैं और गोपियों के बारे में बता रहे हैं कि एक गोपी कह रही है कि हे प्रिय कृष्ण, कि क्या होता है दोपहर के समय जब आप वृंदावन की ओर जाते हैं अपने गायों के साथ, अपने गायों के साथ गोचारण लीला के लिए आप जब जंगल में प्रवेश करते हैं, वृंदावन में प्रवेश करते हैं, तो उस समय एक क्षण हमारे लिए 12 साल के बराबर लगता है। ऐसा लगता है कि 12 साल बीत गए एक क्षण। और जब आप वापस आते हैं, वापस जब आते हैं तो क्या होता है कि आपका सौंदर्य देखकर, क्योंकि आपके केश में क्या होता है ब्रज धूली लगी होती है, और दूर से जब आपके मोर पंख को देखते हैं तो सब ब्रजवासी भागने लगते हैं। माता यशोदा भी जो है चढ़कर देखती हैं दीवार के ऊपर से और दूर देखते रहते हैं कि कृष्ण आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं गाय को लेकर, और जैसे ही मोर पंख नजर आता है सर के ऊपर तो सारे ब्रजवासी बाहर निकल आते हैं, भागते भागते आते हैं। कैसा होगा वो दृश्य, गोधुली, गोधुली की बेला, गोधुली, गोधुली का मतलब यही है कि जब 4 या 5 बज जाते हैं तो गायों के साथ श्री कृष्ण आ रहे हैं और सब गायों को लेकर आ रहे हैं और पूरे शरीर में धूल लगी हुई है। गोचारण तो कम किया लेकिन क्रीड़ा ज्यादा की उन्होंने अपने सखाओं के साथ। तो इस तरह जब वापस आ रहे हैं कृष्ण, वापस आ रहे हैं तो उन्हें देखे बगैर नहीं रहा गया, ऐसा लगा कि देखते रहे कृष्ण को। और ये इच्छा हुई कि हमारे पलके जो है कभी छपके नहीं, लेकिन हमने देखा कि कहीं ना कहीं हमारे पलके छपक रहे हैं। तो ये देखकर बड़े हैरान हो, और इस समय वो ब्रह्मा जी को दोष दे रहे हैं, ब्रह्मा जी को दोष दे रहे हैं, गोपियां ब्रह्मा जी को दोष दे रही हैं कि ब्रह्मा जी जो है किस प्रकार की सृष्टि करता है, उनको तो सृष्टि करना आता ही नहीं है, वो पलके ठीक तरह नहीं बनाया उन्होंने, कि बार बार हमारे पलके झपक रहे हैं, हम कृष्ण को ठीक से देख नहीं पा रहे। तो ये प्रेम माधुरी की बात कि कृष्ण के प्रेम ही भक्त, प्रेमी भक्त अनंत कोटि प्रेमी भक्त है, है ना, अनंत कोटि प्रेमी भक्त है, अंदाजा नहीं लगा सकते हम। और सबसे बड़ी बात यह है कि कृष्ण जो है हर एक प्रेमी भक्त के साथ एक व्यक्तिगत रिश्ता रखते हैं, यह सबसे बड़ी बात। क्योंकि जैसे पहले भी बताया था कि जैसे भक्त इच्छा करता है कृष्ण जो है उस रूप में प्रकट हो जाते हैं, जैसे भक्त कृष्ण की सेवा करना चाहता है उसी रूप में श्री कृष्ण प्रकट हो जाते हैं, और व्यक्तिगत रिश्ता होता है हर भक्त के साथ कृष्ण का। तीसरा है वेणु माधुर्य, वेणु माधुर्य के द्वारा श्री कृष्ण जो है ना ही केवल ब्रजवासियों को आकर्षित करते हैं बल्कि यहां तक कि नदियों को भी, यमुना जी को भी आकर्षित करते हैं, पक्षियों को भी आकर्षित करते हैं, लताओं पताओं को भी आकर्षित करते हैं, और कई प्रकार के पशु जैसे हिरण है, हंस है, सारस है, इन सबको आकर्षित करते हैं। याद कई बार होता है कि वेणु वादन से यमुना जी स्तब्ध हो जाते हैं, हंस सारस जो है वही स्तब्ध खड़े रह जाते हैं कृष्ण का जैसे ही वेणु वादन सुनते हैं। और कृष्ण खासकर जब अर्धरात्रि को वेणु वादन करते हैं, बंसी बट से वेणु बजाते हैं, तो क्या होता है सारी गोपियां जो है ब्रज से अपने घरों को छोड़कर कृष्ण से मिलने चले जाते हैं इसी वेणुवाद को सुनकर। सर्वधर्मान प्रत्यजमाम एकम शरणम ब्रज, इस तरह से इन ब्रजवासियों ने कृष्ण की शरण ली, इन गोपियों ने शरण ली श्री कृष्ण की, इस प्रकार की शरण लेनी होगी हमें। इसको कहते हैं प्रीतिपूर्वकम, भजताम प्रीतिपूर्वकम, तेषाम सततयुक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, ददामी बुद्धि योगम तम येन माम भयान्ति। ये गोपियां, ये ब्रजवासी लोग जो हैं, खासकर जो गोपियां हैं, सतत रूप से युक्त हैं, अर्ध रात्रि को भी कृष्ण से मिलने चले आते हैं। बाकी ब्रजवासियों को तो देखने में लगता है कि वो सब विश्राम कर रहे हैं, निरंतर निश्चित रूप से वो भी कृष्ण का ही चिंतन कर रहे हैं, वो लोग सो नहीं रहे हैं। लेकिन व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो गोपियां उठ खड़ी होकर चली जाती हैं कृष्ण से मिलने का, तो उनको लोग लाज की चिंता नहीं रहती है, घर परिवार की चिंता नहीं रहती है, लेकिन सीधे वो कृष्ण से मिलने चले जाते हैं। जैसे ही कृष्ण का जब वेणु नाद सुनाई देता है, इतना मधुर होता है ये वेणु वादन, यहां तक कि बड़े बड़े देवता शिवजी और ब्रह्मा जी भी चकित हो जाते हैं, और इंद्र ब्रह्मा शिवजी भी जो है वो इस प्रकार के वेणु वादन को नहीं समझ पाते हैं कि किस तरह से बजा रहे हैं वेणु श्री कृष्ण। एक ही सुर से कई राग निकालते हैं कृष्ण, जैसे कि राग निकालने के लिए कई सुरों की आवश्यकता पड़ती है तब जाके राग निकलता है, नहीं लेकिन एक सुर से कोई राग निकाल सकता है, तो श्री कृष्ण एक एक सुर से जो है कई राग निकाल देते हैं। तो ये बात समझ नहीं पाते हैं, बड़े बड़े देव देवता नहीं समझ पाते, ब्रह्मा जी भी नहीं समझ पाते हैं, शिव जी जो नटराज है वो नहीं समझ पाते हैं, सरस्वती नहीं समझ पाती है, कोई नहीं समझ पाता है, और सब चकित हो जाते हैं। तो श्रीमद् भागवत में गोपियां कह रही है, माता यशोदा को कह रहे हैं कि जब आपका ये लड़का है वेणु बजाता है तो शिव जी ब्रह्मा जी और इंद्र, हालांकि ये सबसे बड़े विद्वान हैं महाजन हैं, ये भी मोहित हो जाते हैं कृष्ण के वेणु वादन से। और इस प्रकार हालांकि इतने बड़े व्यक्ति होने के बावजूद भी ये सब जो है नम्रता पूर्वक कृष्ण को प्रणाम करते हैं जैसे कृष्ण वेणु बजाते हैं। तो ये कृष्ण का वेणु माधुर्य है। अगर आप भरत भागवतामृत पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सुंदर वर्णन किया है श्रील सनातन गोस्वामी ने कि किस तरह से वेणुवाद के द्वारा, वेणुवादन के द्वारा एक एक पक्षी, यहां तक कि नदी को भी आकर्षित कर रहे हैं, नदियां किस तरह से आकर्षित हो रही हैं, उनकी लहरें उठ रही हैं, और नदियां खासकर यमुना जी जो हैं और कृष्ण के चरणों को छू रही हैं और कमल पुष्प जो है भेंट में भेंट कर रही हैं, इसी तरह से जो है पक्षी जो है वो बार बार ताक रहे हैं, पेड़ हैं अपनी लताओं के द्वारा बार बार कृष्ण को अपना प्रेम प्रकट करना चाहते हैं, चकित हो जाते हैं, यहां तक कि पक्षी चकित हो जाते हैं। गायों के बारे में लिखा है कि गाय क्या करते हैं कि गाय घबरा जाती हैं देखकर वेणुवादन को सुनती हैं, तो गाय बहुत चकित हो जाती है, उनको लगता है दूर से ही आवाज आती है, अगर दूर से ऐसा लगता है कि हाँ अभी कृष्ण शायद वेणु बजाया है, ये उनकी वेणु की आवाज है, वंशी की आवाज है, तो उनको डर लगता है कहीं कहीं उनका शरीर छूट ना जाए। तो वो क्या करते हैं, आगे का जो दो पांव है ना वो उठाकर अपने कानों में रख लेते हैं, वो डरते हैं गाय। लेकिन और जब कृष्ण बाबा पास आते हैं और आवाज सुनाई देती है, और ऐसा करते करते क्या हो जाता है कि गाय स्तब्ध होकर वहीं खड़े रह जाते हैं, वो हिल नहीं पाते, तो इस प्रकार की हालत होती है। तो गोपियां ये सब देख रही हैं, तो गोपियां देख रही हैं कि गायों की हालत क्या हो रही है, गोपियां देख रही हैं कि लताओं और पताओं की हालत क्या हो रही है, गोपियां देख रहे हैं कि यमुना जी की क्या हालत हो रही है, गोपियां देख रही हैं जैसे श्रीमद् भागवत में बता रहे हैं माता यशोदा को कि बड़े बड़े देवी देवताओं की हालत क्या हो रही है। तो इस प्रकार गोपियां जो है प्रशंसा कर रही हैं और अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि हमारे पास इतनी योग्यता नहीं है शायद। अब देखिए इस वेणु का ही सौभाग्य देखो कि कृष्ण सदैव अपने अथरों के साथ लगाए रखते हैं, कितने सारे छिद्र हैं इसमें, इसे बहुत सारे छिद्र हैं, लेकिन फिर भी कृष्ण इसको अपने अथरों के साथ लगाए रखते हैं, और जिसको बजाते हैं तो कितने लोगों को, कितने जीवात्माओं को आकर्षित करते हैं। तो इस प्रकार इनके वेणु वादन के बारे में चर्चा की श्री रूप गोस्वामी ने, ये इनका वेणु माधुर्य रूप माधुर्य है। भूषणा भूषणांगम, भूषणा भूषणांगम का मतलब है ये है कि ये वास्तव में आभूषण का सौंदर्य बढ़ाते हैं कृष्ण, है ना, आभूषण जो है कृष्ण का सौंदर्य नहीं बढ़ाते हैं कि मैं ऐसे श्रृंगार कर देंगे, ऐसे श्रृंगार कर लेंगे, फूलों से सजावट कर देंगे, अच्छे अच्छे वस्त्र बनाएंगे, है ना, इससे कृष्ण और सुंदर लग रहे हैं। आज कृष्ण और ज्यादा सुंदर लग रहे हैं, कृष्ण तो पहले से ही सुंदर है, आभूषण ज्यादा सुंदर लग रहे हैं, वस्त्र और ज्यादा सुंदर लग रहे हैं जब कृष्ण को पहना दिए जाते हैं। हमें तो कुछ ना कुछ पहनाना पड़ता है, सजावट करनी पड़ती है, तब थोड़ा देखने लायक होते हैं। कितना कुछ करना पड़ता है, कितनी तपस्या करनी पड़ती है, कितना प्रयास करना पड़ता है ताकि हम लोग समाज में अपने आप को प्रस्तुत कर सकें एक सभ्य व्यक्ति के रूप में। प्रातः काल में उठकर 9 छित्रों की सफाई करनी पड़ती है और केश जो धारण किया हुआ है उसकी सजावट करनी पड़ती है, चेहरे की सजावट करनी पड़ती है कि वास्तविकता कुछ और है, इसमें कोई माधुर्य नहीं है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जड़ शरीर है, इस कारण से उसी वास्तविक जो आध्यात्मिक शरीर का ही ये विकृत रूप है। तो इस विकृत रूप में किसी प्रकार का माधुर्य नहीं है, अधूरा है। तो लेकिन यहां पर कृष्ण की जब सुंदरता का वर्णन किया जा रहा है तो यहां बता रहे हैं भूषणा भूषणांगम, यानी कि आभूषण और ज्यादा देखने में सुंदर लगते हैं जब कृष्ण को पहनाए जाते हैं। कृष्ण के शरीर से इतना सौंदर्य, उनके उनके शरीर से इतना तेज निकलता है कि गोपियां परेशान हो जाती हैं। कई बार तो वो चर्चा करती है माता यशोदा से कि हो सकता है जो आभूषण है, इन आभूषणों के कारण जो रोशनी निकलती है उससे सारे ये देख पाता है कि कहां पर रखा है मक्खन, तो इसके आभूषण निकाल देने चाहिए हमें। जब इसके आभूषण निकाल देंगे तो क्या होगा, फिर रोशनी नहीं आएगी। लेकिन ये लड़का बड़ा अद्भुत है, अगर इसके आभूषण निकाल भी दे जाए इसके शरीर से, इसके शरीर से इतना तेज निकलता है कि इसको वैसे ही दिखाई देता है। तो इस प्रकार उनके सौंदर्य की चर्चा कर रहे हैं और यहां पर क्या बता रहे हैं, तो द्वारका में एक बार ये बता रहे हैं कि कृष्ण जो है अपने सुंदर रूप का दर्शन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि स्वयं अपने ही रूप से आकर्षित हो गए, जिस तरह से राधारानी आकर्षित होती हैं श्री कृष्ण के सौंदर्य से, कृष्ण अपने रूप से आकर्षित हो गए। लेकिन ये प्रश्न अलग है, ये सब्जेक्ट मैटर अलग है जिसमें श्री चैतन्य चरितामृत में इसकी चर्चा की गई। क्या चर्चा की गई है कि कृष्ण अपने सौंदर्य से आकर्षित हो गए, लेकिन जितना राधारानी आकर्षित हो रही है, जितना आनंद उनको मिल रहा है उतना आनंद श्री कृष्ण को नहीं मिल रहा है। तो वो अलग ही सब्जेक्ट है, लेकिन यहां पर यही काफी है समझने के लिए, ये पर्याप्त है। तो कृष्ण के जो अद्भुत लीलाएं हैं, उनके भक्त, उनका वेणुवादन, उनकी सुंदरता, इस कारण से वो परम आकर्षक जीव है, सुप्रीम अट्रैक्टिव एंटिटी। तो इसलिए उनको परम विभाव विषय बताया गया है भाव भक्ति का, विभाव विषय, विभाव विषय यानी कि कृष्ण। तो जैसे हमने बताया कि ये दो प्रकार की चर्चा हो रही है यहां, विभाव में विषय और आश्रय के बारे में चर्चा हो रही है। तो यहां पर विषय कौन है, श्री कृष्ण है, और भक्त जो है वो आश्रय है, ठीक है। अब एक एक करके भगवान कृष्ण के गुणों का हम लोग वर्णन करेंगे और 64 देवी गुण बताए गए हैं श्री कृष्ण के, जैसे हमने बताया इससे पहले 64 ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज। और इसमें जरूर ध्यान रहे कि इसे 50 देवी गुण आत्मा के पास भी हैं, मुक्त आत्मा के पास, खासकर जब वो कृष्ण का भक्त बनता है। अगर हमारे पास नहीं है तो मुक्त नहीं है, बद्ध अवस्था में ये गुण नजर नहीं आते, प्रकट नहीं होते हैं। तो पहला क्या बताया है, सुंदर स्वरूप कृष्ण के बारे में बताया है। भगवान के शरीर के विभिन्न अंगों की तुलना विविध भौतिक वस्तुओं से नहीं की जा सकती। सामान्य लोग को जिन्हें ये ज्ञान नहीं होता कि भगवान का स्वरूप कितना उन्नत होता है, भौतिक तुलना के द्वारा समझने का अवसर प्रदान किया जाता है। कहा जाता है कि कृष्ण का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, उनकी जांघें हाथी की सूंड की तरह बलिष्ठ हैं, उनकी दोनों भुजाएं मानो खंभे हो, उनकी हथेलियां मानो खुले कमल के फूल हों, उनका वक्षस्थल कपाट जैसा है, उनके नितंब गुफा की तरह सटे हैं तथा उनका कटी प्रदेश खुली छत की भांति है। तो इस प्रकार गुणों का जब हम वर्णन सुनेंगे, बार बार गुणों का वर्णन सुनेंगे, तो कृष्ण के प्रति आकर्षण जागृत होगा। कृष्ण के प्रति आकर्षण कैसे जागृत होगा? जब उनके गुणों के बारे में हम निरंतर रूप से सुनेंगे, उनकी लीलाओं के बारे में, उनके गुणों के बारे में, उनके रूप के बारे में भक्तों से सुनते रहेंगे, तो क्या होगा? हमारा आकर्षण बढ़ेगा, दिन प्रतिदिन बढ़ेगा। तो यहां पर कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया गया। दूसरा बता रहे हैं, शुभ लक्षणों से युक्त शरीर के विभिन्न अंगों के कुछ ऐसे लक्षण हैं जिन्हें अत्यंत शुभ माना जाता है, वह सब भगवान के शरीर में पूर्णतया विद्यमान रहते हैं। इस प्रसंग में नंद महाराज के एक मित्र ने भगवान कृष्ण के शुभ शारीरिक लक्षणों के विषय में कहा है। क्या कहा है? हे गोपराज, मुझे आपके पुत्र के शरीर में 32 शुभ लक्षण दिखते हैं। कोई भी अगर महापुरुष होता है तो उसमें 32 लक्षण पाए जाते हैं, तो उस व्यक्ति को महापुरुष कहा जाता है। मुझे आश्चर्य होता है कि इस बालक ने ग्वालों के परिवार में क्यों जन्म लिया। सामान्यतया जब भगवान कृष्ण अवतार लेते हैं तो वे क्षत्रियों के कुल में जन्म धारण करते हैं, जैसा कि भगवान श्री राम ने किया, और कभी कभी वे ब्राह्मण के कुल में जन्मते हैं। किंतु कृष्ण ने महारानंद का पुत्र बनना स्वीकार किया, यद्यपि नंद वैश्य जाति के थे। वैश्य जाति का कर्म व्यापार, कृषि तथा गौरक्षा है। अतः नंद के मित्र ने, जो संभवतया ब्राह्मण कुल का था, आश्चर्य व्यक्त किया। एक ब्राह्मण मित्र है जो नंद महाराज को बता रहे हैं कृष्ण के बारे में कि ऐसा उन्नत बालक वैश्य कुल में किस तरह जन्मा। जो भी हो, उसने कृष्ण के शरीर के शुभ चिन्हों का संकेत उसके पोषक पिता से कर दिया। उन्होंने कहा, ब्राह्मण ने कहा, इस बालक के स्थानों पर उसकी आंखों, मतलब 7 ऐसे स्थान हैं श्री कृष्ण के शरीर में, 7 प्लेसेस, जहां पर क्या है, 7 स्थानों में लालिमा शुभ मानी जाती है, लेकिन नकली नहीं होना चाहिए काम। मेकअप के द्वारा नहीं, स्वाभाविक। उनकी आंखों, हथेलियां, तलों मतलब पांव के नीचे, होंठ और जीभ, और तथा नाखून, ये सब लाल है। इन 7 स्थानों की लालिमा शुभ मानी जाती है। उनके शरीर 3 अंग अत्यंत विस्तृत हैं, कमर, मस्तक तथा वक्षस्थल। तो कृष्ण के बारे में इस तरह से सुनना चाहिए बार बार, है ना। सांसारिक लोग क्या करते हैं, नेता, अभिनेता और अभिनेत्रियों के बारे में सुनते हैं, इस प्रकार उन्हीं के बारे में चर्चा करते हैं दिन रात। इस तरह से उनकी देहात्मक बुद्धि बढ़ती रहती है, है ना। लेकिन कृष्ण के सौंदर्य के बारे में हम चर्चा करेंगे, और इस प्रकार जब भी हम भगवान का दर्शन करेंगे तो इन गुणों के बारे में ध्यान रखते हुए हम दर्शन कर सकते हैं कि वास्तव में देखिए, हाँ देखिए, जैसे कि शास्त्रों में वर्णन किया गया है, वैसे ही 7 स्थानों में लालिमा है श्री कृष्ण के शरीर में। इस प्रकार हमारी स्मरण शक्ति बढ़ेगी, हम और अधिक कृष्ण भावना भावित होंगे। तो इन गुणों के बारे में चर्चा करनी चाहिए, गुणों के बारे में सुनना चाहिए। इन 7 स्थानों की लालिमा शुभ मानी जाती है। उनके शरीर के 3 अंग अत्यंत विस्तृत हैं, कमर, मस्तक तथा वक्षस्थल। इसी तरह शरीर के 3 अंग अत्यंत गहरे हैं, गहरे मतलब ये वैसे भी 32 जो लक्षण बताए जाते हैं तो उसमें महापुरुष कोई होता है, भगवान के जब नित्य परिकर यहां प्रकट होते हैं आचार्यों के रूप में, तो कई बार उनके अंदर ये 32 लक्षण पाए जाते हैं। उनकी वाणी, उनकी बुद्धि और उनकी नाभि, ये सब क्या है, गहरी है। उनके शरीर के 5 अंग उन्नत हैं, उनकी नाक जो है उनकी उन्नत है। उनकी बाहें, उनके कान, उनका मस्तक तथा उनकी जांघें, उनके पांच अंगों में सुकमलता है, उनकी त्वचा, उनके सिर के बाल, अन्य अंगों के बाल, उनके दांत तथा उनकी अंगुलियों के पोर। सुकमलता का मतलब क्या है? सॉफ्ट एकदम। इन समस्त स्वरूपों का समुच्चय महापुरुष के ही शरीर में देखा जाता है। हथेली की भाग्य रेखाएं भी शुभ लक्षण मानी जाती हैं, हस्तरेखा। इस प्रसंग में एक वृद्धा गोपी ने राजा नंद को बतलाया, आपके पुत्र की हथेली में अनेक अद्भुत रेखाएं हैं, उसकी हथेली में कमल के फूल तथा चक्र के चिन्ह हैं। देख ले, हमारे कमल के फूल हैं, हाथ में चक्र है। तो जो अपने आप को भगवान घोषित करते हैं उनमें ये सब लक्षण देखने होंगे। मैं कई भगवान घूम रहे हैं अभी समाज में, जिनके बाल सफेद हो गए, दांत नहीं है, तो उनके अंदर ये गुण होने चाहिए कुछ ना कुछ। आपके पुत्र की हथेली में अनेक अद्भुत रेखाएं हैं, उसके हथेली में कमल के फूल तथा चक्र के चिन्ह हैं, और उसके पैरों के तलवे में ध्वजा, वज्र, मछली, अंकुश तथा कमल के चिन्ह हैं। देखिए ना ये चिन्ह कितने शुभ हैं। तो 19 चिन्ह पाए जाते हैं कृष्ण के चरणों में, पता आपको? तो 19 चिन्ह पाए जाते हैं, ये चिन्ह कितने शुभ हैं। तीसरा गुण बताया, रुचिर, नेत्रों को बरबस आकृष्ट करने वाले सुंदर शारीरिक अंग रुचिर कहलाते हैं। कृष्ण के शारीरिक अंगों में ये आकर्षक रुचिर स्वरूप पाया जाता है। श्रीमद भागवत में इस संबंध में एक कथन मिलता है, जहां राजा युधिष्ठिर राजसी यज्ञ कर रहे थे, उस स्थल में भगवान मनोहर वेश धारण किए प्रकट हुए। इस यज्ञ स्थल में विश्व भर के विविध भागों से सभी महत्वपूर्ण पुरुषों को आमंत्रित किया गया। कृष्ण को देखकर इन सबों को लगा मानव सृष्टा ने कृष्ण के इस शरीर की सृष्टि करने में अपना सारा कौशल लगा दिया हो। कहा जाता है कि कृष्ण के दिव्य शरीर के 8 अंग कमल पुष्प से समान रखते हैं। कृष्ण के जो 8 अंग ऐसे हैं जो कमल सदृश हैं, कौन कौन से जानना चाहेंगे? उनके मुख, उनका मुख जो है कमल सदृश है, उनके दोनों नेत्र, उनके दोनों हाथ, उनकी नाभि तथा उनके दोनों पांव। इससे भी नम्रता आती है भक्तों में। जब जब अहंकार आता है तो ये गुण है या नहीं देख लेना चाहिए, तो ये गुण कहीं नजर नहीं आएंगे। तो शांति से जप करें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मायावादियों में ये गुण नहीं पाए जाते, जो एक दूसरे को नारायण करके संबोधित करते हैं, नमो नारायण। तो नारायण तो ठीक है, लेकिन आपके मुख, आपका मुख का जब दर्शन किया तो इसमें कमल जैसा कोई नजर नहीं आ रहा है, इसमें तो केवल कांटे कांटे नजर आ रहे हैं, वो भी बिना पत्तों के। उनकी नाभि तथा उनके दोनों पांव, गोपियां तथा वृंदावनवासी सर्वत्र इन कमल पुष्पों की कांति देखते और ऐसे दृश्य से दृष्टि हटाने को उनका जी नहीं चाहता था। तो ये सब जो है 8 जो बताए हैं अंग बताए हैं कमल पुष्प के समान हैं श्री कृष्ण के। तेजोमय, यस्या प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटि शशेष विभा, क्या है, वसुधाति विभूति विन्नम तद ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तम जामि। तेजोमय, तेज निकलता है, जो तेज आध्यात्मिक जगत को प्रकाशित करता है और भौतिक जगत को भी प्रकाशित कर रहा है। आध्यात्मिक जगत का जो प्रकाश है उसी का ही विकृत रूप है ये सूर्य। जो सूरज की रोशनी आपको नजर आ रही है ये भगवान के शरीर से निकल रही है, लेकिन इस जगत में ये विकृत रूप में नजर आती है, इसलिए यहां पर गर्मी लगती है। इसकी गर्मी से लोग काले पड़ जाते हैं, लेकिन भगवान के धाम में जो तेज निकलता है उससे लोग काले नहीं पड़ते। काले होते हैं वहां पर, लेकिन उनकी रोशनी के कारण नहीं। कृष्ण भी स्वयं काले हैं। कृष्ण काले हैं, कई लोग बोलते हैं कृष्ण तो काले हैं आपके, ये कौन सी सुंदरता है। तो ये बताया गया है कि शास्त्रों में कि यहां तक कि वैज्ञानिक लोग भी स्वीकार करते हैं, यानी कि कार जो रंग है काला रंग है उसको रंग नहीं माना जाता वास्तव। जब सारे रंग जो है ढक जाते हैं, छुप जाते हैं, जब रंग नहीं प्रकट होते हैं तो वो रंग काला कहा जाता है, और जो सारे रंग मिल जाते हैं उसको गोरांग रंग कहा जाता है। एब्सेंस ऑफ ऑल कलर्स इज कृष्णा एंड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल कलर्स इज गोरांग महाप्रभु। तो इस प्रकार से भी वर्णन मिलता है। तेजोमय कृष्ण धाम में सदैव ब्रह्म ज्योति विकीर्ण होती रहती है और ये तेज उनके शरीर से निकलता है। तो वहां पर दिन रात अगर होती भी है तो केवल लीला के लिए, लीला में आनंद की वृद्धि के लिए चंद्रमा का दर्शन होता है, पूर्णिमा का दर्शन होता है। नवा चंद्रमा की आवश्यकता है, नवा बिजली की आवश्यकता है। कहां पे बोल रहे हैं गीता में भगवान, न तद भाषते सुरो न शशांको न भावका यद गत्वा निवर्तन्ते तद धामा परम ममा। वहां जाते हैं तो फिर लौट के नहीं आना पड़ता है संसार में, है ना। फिर वहां बिजली का बिल आपको नहीं देना पड़ेगा वहां जाने पर। भगवान के वक्ष स्थल पर सुशोभित मणियों की कांति सूर्य की कांति को भी मात करने वाली है, फिर भी भगवान के शारीरिक कांति की तुलना में ये मणियां आकाश में एक नक्षत्र जैसी चमकीली लगती हैं। अतएव कृष्ण का दिव्य तेज इतना अधिक है कि वे किसी को भी परास्त कर सकता है। जब कृष्ण अपने शत्रु राजा कंस के यज्ञ स्थल में गए तो वहां पर उपस्थित मल्लों ने कृष्ण के शरीर की सुकुमारता की प्रशंसा तो की, किंतु वे इनके साथ मल्ल युद्ध करने के विचार से भयभीत एवं उद्विग्न हो उठे। उनके शरीर में तेज देकर ही वो लोग भयभीत हो गए। जैसे प्रकाशन सरस्वती और उनके साथ जितने भी मायावती सन्यासी थे, उन्होंने अब श्री चैतन्य महाप्रभु के शरीर का तेज देखा तो वो आकर्षित हो गए, क्योंकि उनका साक्षात्कार क्या था, केवल उतना ही था, तो महाप्रभु उनको वही दिखा रहे थे, है ना। उनकी अनुभूति क्या थी, ब्रह्म साक्षात्कार, तो महाप्रभु केवल ब्रह्म ज्योति प्रकट कर रहे थे और उससे वो आकर्षित हो रहे थे। कितना तेजस्वी सन्यासी है ये देखो, है ना, इसके शरीर से इतना तेज निकल रहा है, नारायण नारायण। तो फिर प्रकाश सरस्वती आगे जाकर जो है उनको महाप्रभु को उठा के लिया है। सारे सन्यासी देखकर चकित हो गए, महाप्रभु को देखकर, उनके तेज को देखकर। तो अस्त्र था ये भी चैतन्य महाप्रभु का अस्त्र था, भगवान का, महाप्रभु का जो सौंदर्य है, दो अस्त्र थे महाप्रभु के पास, महाप्रभु का अपना सौंदर्य और शास्त्र में उनका बोलना, क्या बोलना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इस तरह से महाप्रभु सब जीवात्माओं को आकर्षित कर रहे थे। बलवान, तो भगवान बड़े बलवान हैं, शक्तिशाली हैं, है ना। अद्वितीय शारीरिक शक्ति वाला व्यक्ति बलियान कहलाता है। जब कृष्ण ने अरिष्टासुर का वध कर दिया तो कुछ गोपियां कहने लगी, सखियों देखो ना कृष्ण ने किस तरह अरिष्टासुर को मार डाला। यद्यपि यह असुर पर्वत से भी कठोर था, किंतु कृष्ण ने उसे रुई की तरह उठाकर बिना किसी कठिनाई के दूर फेंक दिया। अरिष्टासुर को कैसे फेंका, जैसे कोई रुई फेंकता है। पूतना को कैसे मारा, 18 मील लंबी पूतना थी। पूतना कितनी लंबी थी, 18 मील यहां से पंजाबी बाग तक, 18 किलोमीटर है, 12 मील, हाँ, तो इस तरह 12 मील, क्षमा करिए, 18 किलोमीटर, हाँ ठीक है, 18 किलोमीटर लंबी थी पूतना। और पूतना को मारने के बाद कृष्ण उसके ऊपर बैठे हुए थे, है ना, और सब ब्रजवासी एकत्रित हो गए, हैरान हो गए, क्या हो गया, कृष्ण कहाँ है, कहाँ है कृष्ण, कहाँ है कृष्ण, इधर उधर देखने लगे। किसी ने बताया, वो देखो ऊपर बैठे, कितनी लंबी चौड़ी थी पूतना, छठे दिन में मारा, छठे दिन में मार दिया। तो इस तरह से कृष्ण जो है, इनकी शक्ति देखिए। कृष्ण इसलिए भगवान जब प्रकट होते हैं तो प्रकट होते ही दिखा देते हैं कि वो भगवान। यह है भगवान का ऐश्वर्य, है ना। ये नहीं कि भगवान बाद में घोषित करते हैं अपने आप को, अब मैं भगवान बन गया हूं, पहले कुछ और था। तो भगवान शुरू से ही भगवान होते हैं। यद्यपि असुर पर्वत से भी कठोर था, किंतु कृष्ण ने उसे रुई की तरह उठाकर बिना किसी कठिनाई के दूर फेंका। एक अन्य पद में कहा गया है, हे कृष्ण भक्तों, कंदू के समान गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले कृष्ण का बायां हाथ सारे संकटों से तुम्हारी रक्षा करे। कंदू मतलब गेंद, जैसे कोई गेंद उठाता है ऐसे, तो ऐसे गिरिराज जी को उठा दिया। तो इस तरह से कृष्ण जो है अपने शक्ति का उपयोग करते हैं अपने भक्तों के लिए, भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए। लेकिन भक्त जो है उनके इस ऐश्वर्य से आकर्षित नहीं होते हैं। सात दिन सात रात कृष्ण गिरिराज जी को उठाया भी तो कृष्ण के सौंदर्य से ही और कृष्ण से वो आकर्षित हुए, उनके शक्ति प्रदर्शन से वो आकर्षित नहीं हुए कि देखो इतने बड़े गिरिराज जी को उठा लिया हमारे कृष्ण ने। उल्टा वो लोग तो सखा वगैरह क्या कर रहे थे, वो छड़ी दिखा रहे थे, हाँ, सहायता करने के लिए। तो इसलिए कृष्ण अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, बड़े बड़े असुरों और राक्षसों का वध करते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि लंच टाइम से पहले कृष्ण रोज दो राक्षस मारते थे और उसके बाद यमुना जी के तट पर भोजन लीला करते थे। तो उनके लिए तो रोज एक क्रीड़ा थी असुरों को मारना, बाएं हाथ का खेल था उनके लिए। और ये छोटे मोटे असुर नहीं थे, अगासुर को देख लीजिए आप, कितना बड़ा, बाप रे, अजगर के समान, है ना, कितना लंबा, उसे मुंह खोल के रखा हुआ था। और सखा लोग सोच रहे थे, अरे अरे देखो गुफा है, यहां खेलेंगे हम, कितनी लंबी चौड़ी सड़क है इसके अंदर, चलो चलो अंदर चले। तो सखा सब अंदर जाने लगे तो कृष्ण भी जो है सोचने लगे, अरे ये कहां जा रहे हैं। एक क्षण के लिए कृष्ण भी सोने लगे, अरे ये क्या हो गया, योग माया का प्रभाव। ये योग माया का प्रभाव कभी कभी कृष्ण अपने ऊपर भी डलवाते हैं लीलाओं के लिए। तो सारे सखा अंदर घुस गए, उन्होंने कहा अरे रे ये कहां चले गए। तो कृष्ण फिर अंदर चले गए, तो उन सबको जो है फिर क्या कर दिया, बेहोश कर दिया। फिर कृष्ण जो है शक्ति का प्रदर्शन किया। एक शक्ति की बात जब करते हैं, कृष्ण की शक्ति का वर्णन करते हैं, तो ये बात सबसे महत्वपूर्ण है समझना कि कृष्ण को अगर शक्ति का प्रदर्शन करना होता है तो उसमें उनका अपना आकार बड़ा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो जैसे हैं वैसे ही उसी रूप में रहकर ही अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर पाते हैं। जैसे पूतना का वध किया तो हालांकि पूतना इतनी लंबी चौड़ी थी लेकिन कृष्ण का साइज उतना ही था। कृष्ण विराट रूप नहीं लिया पूतना को मारने के लिए, है ना, कृष्ण उतने ही आकार के थे। ये है उनकी शक्ति का प्रदर्शन। और यहां पर हम देखते हैं जब वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप होता है और वहां पर 300 किलो 400 किलो उठाते हैं तो कितना वहां पर तपस्या करनी पड़ती है उन लोगों को। वो बार बार ऑडियंस को देखते रहते हैं, है ना, और वो दोनों हाथों से पकड़ता है उसको उठाने की कोशिश करता है, है ना, और कितनी आवाजें निकालता है वो, कभी आगे जाता है कभी पीछे जाता है, फिर लोग तालियां बजाते हैं। और जब बीमारी लगती है तो फिर क्या है, वो एक कप भी नहीं उठा पाते हैं। तो इस प्रकार ये शक्ति का प्रदर्शन करते हैं भगवान। अद्भुत भाषाविद श्री अनूप गोस्वामी कहते हैं, नहीं क्षमा करिए, नित्य युवा श्री कृष्ण विभिन्न अवस्थाओं में अपनी शैशव अवस्था, कुमार अवस्था तथा युवावस्था में सुंदर है। इन तीनों अवस्थाओं में उनकी युवावस्था समस्त आनंदों की आगार है और यह व्यवस्था है कि जब अधिकाधिक प्रकार की भक्ति स्वीकार की जाती है। इस आयु में कृष्ण समस्त दिव्य गुणों से ओतप्रोत रहते हैं और अपनी दिव्य लीलाओं में व्यस्त रहते हैं। अतः भक्तों ने उनकी युवावस्था के प्रारंभ को भाव प्रेम में सर्वाधिक आकर्षक स्वरूप स्वीकार किया है। इस आयु में कृष्ण का वर्णन इस प्रकार हुआ है, कृष्ण की युवावस्था का बल उनकी सुंदर मुस्कान से मिलकर पूर्ण चंद्र के भी सौंदर्य को परास करने वाला था। वह अच्छी तरह से वस्त्राभूषित थे और सुंदरता में कामदेव से बढ़कर थे। वे गोपियों के मनों को सदैव आकर्षित करते थे जिससे उन्हें सदैव आनंद की अनुभूति होती थी। यानी कि मदन को भी मोहित कर लिया श्री कृष्ण ने अपनी सुंदरता के द्वारा। जब रासलीला प्रारंभ होने वाली थी तो फिर क्या हुआ कि मदन ने सोचा कि देखो अब शिवजी को मैंने परास्त कर दिया, ब्रह्मा जी को परास्त कर दिया, अब सिर्फ कृष्ण रह गए हैं, इनके ऊपर मैं बाण चलाऊंगा। तो वो पेड़ के ऊपर जाके बैठ गया, वो है ना परिक्रमा मार्ग में, क्या नाम है उस जगह का नाम, बराज क्षेत्र के पास है, वहां पर पेड़ के ऊपर जाके बैठ गए और वहां से देखने लगे कृष्ण को। और जैसे ही बाण चलाना शुरू किया तो खुद ही मोहित हो गए और वहां से नीचे गिर गए, कृष्ण के सौंदर्य को देखकर वो नीचे गिर गए। यानी कि मदन को भी मोहित करने वाले हैं कृष्ण, इसलिए मदन मोहन का जब हम दर्शन करते हैं तो हमारे हृदय में जो मदन है उनको भी मोहित करेंगे कृष्ण। हम सबके हृदय में मदन कहीं ना कहीं बैठा हुआ है, कामदेव बैठे हैं, तो जब मदन मोहन जी का दर्शन करेंगे तो क्या होगा, मदन मोहन जी हमारे हृदय में जो कामदेव बैठे हैं उनको आकर्षित कर लेंगे और कामदेव बाहर निकल जाएंगे, और जब काम बाहर निकलेंगे तो जगह खाली हो जाएगी, मदन मोहन जी अंदर आ जाएंगे, है कि नहीं, कितना सिंपल है। तो इस प्रकार यह वर्णन किया गया, अद्भुत भाषाविद लिंग्विस्टिक। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि जो पुरुष विभिन्न देशों की भाषाएं जानता है, विशेषतया देव भाषा संस्कृत तथा विश्व की अन्य भाषाएं जिनमें पशु भाषाएं सम्मिलित हैं, वह अद्भुत भाषाविद कहलाता है। इस कथन में प्रतीत होता है कि कृष्ण पशुओं की भाषा भी बोल तथा समझ सकते थे। कृष्ण की लीलाओं के समय उपस्थित वृंदावन के एक वृद्धा स्त्री ने आश्चर्य व्यक्त किया था, ब्रजभूमि की तरणियों का हृदय चुराने वाले वे कृष्ण इतना अद्भुत है कि वह गोपियों के साथ ब्रजभूमि की भाषा बोलता है, देवताओं से संस्कृत में बोलता है और पशुओं की भाषा में गायों तथा भैंसों से भी बातें करता है। इसी प्रकार कश्मीर प्रांत की भाषा, सुगों तथा अन्य पक्षियों की भाषा एवं अधिकांश लोग भाषाओं में कृष्ण कितने दक्ष हैं, तो कृष्ण सारी भाषाएं जानते हैं। उसने गोपियों से पूछा कि विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोलने में वह इतना दक्ष कैसे हुआ, कैसे भाषाएं इतनी सारी सीख ली इसने। प्रभुपाद भी जो है कई बार बहुत उनके अंदर ये गुण थे, वो नाना प्रकार की आवाजें निकालते थे और पशु समझ जाते थे, है ना। तो एक बार क्या हुआ कि एक जो है एक कुत्ता है, मॉर्निंग वॉक में प्रभुपाद चल रहे थे तो सामने से कुत्ता आया, तो सब डर रहे थे, उनके शिष्य डर रहे थे, है ना। तो जब शिष्य डरने लगे तो फिर प्रभुपाद ने देखा, प्रभुपाद चुप थे पहले, तो बार बार वो शिष्य देख रहे थे और डर रहे थे, क्योंकि वो कुत्ता बहुत लंबा चौड़ा था, डॉबरमैन का होता ना, बहुत लंबा चौड़ा होता, इतना लंबा होता, शेर की तरह होता है देखने में, उसको देख के सब डर रहे थे। तो प्रभुपाद ने फिर छड़ी दिखाया, प्रभुपाद ने कहा हट, और जैसे ही प्रभुपाद ने हट किया वो कुत्ता भाग गया, वहां से कुत्ता चला गया। तो उसके बाद फिर प्रभुपाद जब जयपुर पहुंचे थे और साथ में उनके जो सर्वेंट थे उनका नाम था नंद कुमार था उसमें, तो वो किचन में कुकिंग कर रहे थे और प्रभुपाद दूसरे ही कमरे में बैठे थे, तो एक बंदर आया वहां से, हाँ वृंदावन था, अच्छा, तो वो बाहर से एक बंदर अंदर आने की कोशिश कर रहा था, है तो अंदर आने की कोशिश कर रहा था और ये भक्त सोच रहे थे कि कैसे इसको भगाऊं मैं। फिर उनको याद आया, हाँ प्रभुपाद ने उस कुत्ते को कैसे भगाया था, मैं भी भगाऊंगा वैसे। वो बंदर जैसे अंदर आया तो नंद कुमार ने क्या किया, बोला हट, और जैसे ही हट बोला बंदर पीछे आ गया भाग के और बड़ी तेजी से भागे भागे आए प्रभुपाद के पास। तब तक बंदर वहां से चला गया। उसने कहा, प्रभुपाद आपने जब हट किया तो वो कुत्ता भाग गया है? और मैंने जब किया तो मेरे पीछे आ गया, ऐसा क्यों? प्रभुपाद कहते हैं यू डोंट नो द आर्ट, आई नो द आर्ट। प्रभुपाद कहते मैं जानता हूं ये कला। तो प्रभुपाद इस प्रकार की कई आवाजें निकालते थे। तो इस प्रकार जैसे यहां बताया गया है कि अद्भुत भाषाविद सत्यवादी, जिस व्यक्ति का वचन कभी भंग नहीं होता वह सत्यवादी कहलाता है। एक बार कृष्ण ने पांडवों की माता कुंती को यह वचन दिया था कि वे उनके पांचों पुत्रों को कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल में वापस लाएंगे। युद्ध समाप्त होने पर जब पांचों पांडव घर आ गए तो कुंती ने कृष्ण की प्रशंसा की, क्योंकि उन्होंने अपने वचन को पूरा किया था। नहीं, कई बार वचन भंग भी करते हैं कृष्ण, दोनों चीजें हैं, वो गुण भी आएगा, वो गुण के रूप में नहीं बताया जाता है। 64 गुण जब बातें बताई जाती हैं तो अच्छी अच्छी बातें बताई जाती हैं, क्योंकि कृष्ण जो है वो मर्यादा भी भंग करते हैं, है ना, क्योंकि कृष्ण सर्वसंपन्न है, उनके पास सब कुछ है ना। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं उसमें जो बुक है ना परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर, कृष्णा इज द ग्रेटेस्ट रास्कल, और रास्कल भी है तो ग्रेटेस्ट है, तो किसी चीज में कम नहीं है कृष्ण। इसलिए विश्वनाथ जी ठाकुर कहते हैं कि कृष्ण इसलिए अर्जुन को बोला तुम घोषणा करो, मैं घोषणा नहीं करता, मैं तो वचन भंग करता हूं कई बार, कौन ते आपति जाना ही नामे भक्त प्रणश्यति। वे बोली भले ही सूर्य किसी दिन शीतल पड़ जाए और चंद्रमा किसी दिन उष्ण उष्ण बन जाए, किंतु तो भी आपका वचन असत्य नहीं होगा। इसी प्रकार जब भीम तथा अर्जुन के साथ कृष्ण जरासंध को ललकारने गए तो उन्होंने जरासंध से स्पष्ट कह दिया था कि दोनों पांडवों के साथ उपस्थित वे साक्षात कृष्ण हैं। कथा इस प्रकार है कि कृष्ण तथा पांडव, यहां पर भीम तथा अर्जुन दोनों क्षत्रिय थे, जरासंध भी क्षत्रिय था और वे ब्राह्मणों को खूब दान देता था, इसलिए जरासंध से युद्ध करने की योजना बनाकर कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण कर लिया और भीम तथा अर्जुन के साथ हो लिए। क्योंकि जरासंध ब्राह्मणों को दान देता था अतः उसने कृष्ण से कहा कि तुम क्या चाहते हो, और तब उन्होंने उससे युद्ध करने की इच्छा व्यक्त की। तो ब्राह्मण वेशधारी कृष्ण ने तब अपने को वही कृष्ण घोषित किया जो राजा का नित्य शत्रु था, तो इस प्रकार युद्ध कर पाए। तो इस प्रकार जो है कृष्ण हमारे जब भी भक्तों को वचन देते हैं वचन पूरा करते हैं। मधुरभाषी, जो व्यक्ति अपनी शत्रु को शांत करने के लिए मीठे वचन बोलता है वे मधुरभाषी कहलाता है। शत्रु के साथ भी बड़ा मधुरभाषी होता है जो कृष्ण ऐसे मधुरभाषी थे कि अपने शत्रु कालिया को यमुना नदी में परास करने के बाद उसे बोले हे नागराज, यद्यपि मैंने तुम्हें इतनी पीड़ा पहुंचाई है किंतु मुझसे रुष्ट मत हो, ये मेरा धर्म है कि देवताओं की भी पूज्य इन गायों की रक्षा करो, इनको तुम्हारे भय से बचाने के लिए ही मैंने तुम्हें इस स्थान से बाहर निकाला है। कालिया यमुना के जल के भीतर रहता था, अतएव नदी का पिछला भाग विषैला हो चुका था, इसलिए जिन गायों ने यह जल पिया था वे मर गई थी। यद्यपि कृष्ण केवल 4-5 वर्ष के थे किंतु उन्होंने पानी में डुबकी लगाकर कालिया को कठोर दंड दिया और उससे उस स्थान को छोड़कर अन्यत्र जाने के लिए कहा। प्रभुपाद कहते हैं कि कालिया को कहां भेजा कृष्ण ने, फिजी आइलैंड्स भेज दिया, फिजी आइलैंड्स। और फिजी आइलैंड में वहां पर कालिया नाग के ऊपर कृष्ण है, उनका विग्रह है वहां पर, मंदिर बनाया वहां पर, हाँ कृष्ण कालिया, यही 16 तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने वहां पर मंदिर बनाया। तो प्रभुपाल ने कहा कि वहां पे चले गए कालिया नाग को, वहां पर भेज दिया, इतनी दूर भेज दिया, देखिए कहाँ वृंदावन और कहाँ पे फिजी आइलैंड है ना, इसलिए कोई स्नेक नहीं है वहां पर, कालिया तो है कालिया नाग। इनको तुम्हारे भय से बचाने के लिए मैंने तुम्हें स्थान से बाहर निकाला है। कालिया यमुना के जल के भीतर रहता था, नदी का पिछला भाग विषैला हो चुका था, इसलिए जिन गायों ने यह जल पिया था वे मर गई थी। यद्यपि कृष्ण केवल 4-5 वर्ष के थे किंतु उन्होंने पानी में डुबकी लगाकर कालिया को कठोर दंड दिया और उसे उस स्थान को छोड़कर अन्यत्र जाने के लिए कहा। कृष्ण ने उस समय कहा कि गौएं देवता द्वारा भी पूजित हैं और उन्होंने ये प्रत्यक्ष दिखलाया कि गायों की किस तरह रक्षा की जाती है। कम से कम उन लोगों को जो कृष्ण भावना भावित हैं उनके चरण चिन्हों पर चलकर गायों को सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। प्रभुपाद लिख रहे हैं गायें केवल देवता द्वारा ही पूजित नहीं है, कृष्ण ने भी उनके अवसरों पर विशेषतया गोपाष्टमी तथा गोवर्धन पूजा के समय गायों की पूजा की थी। तो कृष्ण बड़े मधुरभाषी हैं, अलग अलग भाषाओं में पुकारते हैं, गायों को पुकारते हैं, मधुर भाषा में बात करते हैं, एक एक गाय का नाम जानते हैं, अलग अलग नाम सबको पुकारते हैं, है ना। तो इस प्रकार मधुर भाषी बनना चाहिए, है ना। ये सब गुण जो है जीवात्माओं के पास भी प्राप्त हो सकते हैं, शुद्ध भक्तों के पास भी ये गुण होते हैं लेकिन आंशिक रूप में, है ना। कृष्ण जितने मधुर भाषी तो नहीं बन सकते हैं आप, लेकिन आंशिक रूप में भी मधुर भाषी बन सकते हैं। लेकिन मधुर भाषी का मतलब ये नहीं कि आप डिप्लोमेसी दिखाएं, कपटता नहीं होनी चाहिए। तो गोपाष्टमी के दिन सबसे पहले कृष्ण जो है गोचारण लीला के लिए निकले थे, जहां पर गायों के बारे में बताया गया है, तो गायों को लेकर सबसे पहले कब निकले थे, गोपाष्टमी के दिन, ये भी कार्तिक मास में आता है। और पहली बार श्रीमती राधारानी जो है कृष्ण को देखने के लिए बाहर निकली थी, जब उनको पता चला था कि कृष्ण जो है गायों को लेकर जाने वाले हैं, और उन्होंने अपने लहंगे को थोड़ा सा ऊपर किया और इस कारण से पहली बार श्रीमती राधारानी के चरणों का दर्शन हुआ। हम तो राधाष्टमी के दिन चरणों का दर्शन कराते हैं, लेकिन वास्तव में गोपाष्टमी के दिन पहली बार श्रीमती राधारानी के चरणों का दर्शन हुआ और कृष्ण जो है गायों को लेकर वृंदावन में प्रवेश करते हैं। वाक्पटु, जो व्यक्ति समस्त विनयशीलता तथा उत्तम गुणों के साथ सार्थक शब्द बोलता है वह भावदूक अथवा वाक्पटु कहलाता है। श्रीमद् भागवत में कृष्ण द्वारा विनयशीलता से बोलने का सुंदर उदाहरण मिलता है, जैसे प्रभुपाद वाक्पटु थे, है ना। प्रभुपाद कितने एक्सपर्ट थे बोलने में, है ना। प्रभुपाद जानते थे किस तरह से उत्तर देना चाहिए, किस प्रश्न का क्या उत्तर देना चाहिए, है ना। तो जब कृष्ण ने अपने पिता नंद महाराज से वर्षा के देवता इंद्र के सम्मान में अत्यंत शिष्टता पूर्वक जाने वाले यज्ञ को बंद कराने को कहा तो गांव की एक ग्वालिन उन पर मोहित हो गई। कितनी वाक्पटुता थी कृष्ण के पास, है ना। इंद्र तो वहां पर भी बरसात करते हैं जहां पर कोई यज्ञ नहीं करता है। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा, यज्ञ करने की क्या आवश्यकता है। कभी आपने देखा इंद्र को भोग लेते हुए स्वीकार करते हुए आज तक? ये शास्त्रों के अनुसार हो रहा है कि यह हमारी प्रथा है? इस प्रकार कई तरह से नास्तिक सिद्धांत प्रस्तुत किए कृष्ण ने, ये उनकी वाक्पटुता थी। और नंद महाराज को कन्विंस किया कि गोवर्धन पूजा ही करें, इंद्र की पूजा ना करें। लेकिन वास्तव में नंद महाराज उनकी वाक्पटुता से आकर्षित नहीं हुए थे, कृष्ण से प्रेम था, इस कारण से नंद महाराज जो है कृष्ण की बातों को स्वीकार कर लिया, इस कारण से कृष्ण की बात को उन्होंने मान लिया, वाक्पटुता के कारण है। लेकिन हम लोगों के लिए ये बात जानने के लिए है कि कृष्ण वाक्पटु है। कृष्ण अपने पिता से इतनी शिष्टता में मैंने शीतल से बोलते रहे मानो वे वहां पर उपस्थित लोगों के कानों में अमृत उड़ेल रहे हों। यहां तक कि और भी जो नंद महाराज के और सखा थे, वृद्ध गोप सखा थे, उपनंद थे, उन्होंने ये भी कहा कि जाओ आप लोग खेलो, क्यों आप लोग पढ़ते हो, समस्या पढ़ते हो, है ना। अभी से सब जाने की कोई आवश्यकता नहीं, जाओ जाओ आप लोग सब खेलो जाओ, है ना। बोलते हम सब जाके खेले, आगे चलकर आप नहीं चाहते कि हम भी यज्ञ करें? ये परंपरा को तो हमें आगे बढ़ाना होगा, तो क्या हमारे लिए आवश्यक नहीं है सब जानना? तो इस तरह से कृष्ण जो है नंद महाराज को कन्विंस कर रहे थे और नंद महाराज को बताने का प्रयास कर रहे थे। कृष्ण की वाणी ब्रह्मांड के समस्त उत्तम गुणों से युक्त है। कथा गानम नाट्यम गमनम अपि वंशी प्रिय सखी, ब्रह्म संहिता में भी यह लिखा है कि जब वहां गोलोक में जब बोलते हैं तो क्या लगता है, ये लोग ऐसे गा रहे हैं, और जब लोग चलते हैं तो ऐसा लगता है कि नृत्य कर रहे हैं। और श्री विश्वनाथ जी ठाकुर बोलते हैं वास्तव में जब वो गाते होंगे तो कैसा लगता होगा, और जब वास्तव में वो नृत्य करते हैं तो कैसा लगता होगा। ये तो उनके नृत्य परिक्रम के बारे में बताया गया है। और कृष्ण की बात फिर कहना गया, जब कृष्ण वास्तव में गाते होंगे तो क्या होता होगा, जब वो बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि वो गा रहे हैं, है ना। इसलिए इसको भगवद गीता कहा गया है, भगवान के द्वारा गाया गया गीत, है ना। क्योंकि जब भगवान बोलते भी हैं तो ऐसा लगता है कि भगवान गा रहे हैं, श्लोक का उच्चारण भी कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि कृष्ण बोल रहे हैं, गा रहे हैं। तो मत वाक पटुता है। कृष्ण की वाणी ब्रह्मांड के समस्त उत्तम गुणों से युक्त है। उद्धव ने इसका वर्णन इस प्रकार किया है, कृष्ण के वचन इतने आकर्षक होते हैं कि वह अपने विपक्षी के भी हृदय को तुरंत परिवर्तित कर देते हैं। जैसे हमारे कई हमारे वैष्णव हैं, प्रभुपाद हैं या उनके शिष्य हैं, कितने वाक्पटु होते हैं। भक्त कई बार क्रोधित होकर परेशान होकर अपने गुरु के पास जाते हैं और जैसे गुरु से एक शब्द सुनते हैं बिल्कुल शांत हो जाते हैं, होता है कि नहीं। ये वाक्पटुता देखी जाती है, गुरु में भी देखी जाती है, वैष्णव में देखी जाती है। तो ये वाक्पटुता एक कला जागृत होती है, जैसे जैसे भक्त बने लगते हैं ये कला जागृत हो जाती है। कृष्ण के वचन इतने आकर्षक होते हैं कि वह अपने विपक्षी के हृदय को तुरंत परिवर्तित कर देते हैं। उनके वचन विश्व के सारे प्रश्नों तथा सारी समस्याओं को तुरंत हल करने वाले हैं। वह अधिक नहीं बोलते, कृष्ण के बारे में क्या लिखा है, वह अधिक नहीं बोलते हैं, लेकिन जितना बोलते हैं वही बहुत। उनके मुख से निकला हर शब्द अर्थपूर्ण होता है। कृष्ण के ये वचन मेरे हृदय को अत्यंत सुहावने लगते हैं। वाक्पटु कौन थे? श्रील प्रभुपाद जी से। तो एक बार किसी शिष्य ने कहा कि प्रभुपाद, किसी ने पूछा था भगवान रजनीश से कि आप अपना विराट रूप दिखाएंगे, तो प्रभुपाद ने कहा, उस भगवान रजनीश ने कहा कि पहले तुम्हें अर्जुन जैसे योग्य गुण जागृत करने पड़ेंगे, तब मैं तुम्हें अपना विश्व रूप दिखाऊंगा। तो प्रभुपाद बोलते हैं, लेकिन उसमें से कोई तो एक होगा जो योग्य होगा अर्जुन की तरह, जिसने उसका उनका विश्व रूप देखा होगा। तो वो कहते हैं कि नहीं, शायद ऐसा कोई नहीं है। तो प्रभुपाद कहते हैं, फिर वो प्रचार क्यों कर रहा है? तो प्रभुपाद कहते हैं, ऐसे लोगों को मुंह नहीं देखना चाहिए। तो प्रभुपाद बड़े वाक्पटु थे, है ना, कुछ ही शब्दों में उत्तर देते और समझाते थे। फिर कहते थे कि स्वामी चिन्मयानंद है, वो कुछ ही श्लोकों की व्याख्या करते हैं, भगवदगीता से कुछ लोग श्लोक लेते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं, है ना। तो प्रभुपाद कहते हैं, फिर उनका गला काट देना चाहिए, उनकी गर्दन उड़ा देनी चाहिए। तो इस प्रकार यह है वाक कला, है ना। तो ऐसा धूर्त है, भरे हुए हैं समाज में, है ना, वाक जाल। ये वाक्पटुता नहीं है जो संस्कृत भाषा के द्वारा, वाक जाल के द्वारा लोगों को आकर्षित कर रहे हैं, लेकिन लोगों को धोखा दे रहे हैं। इस तरह प्रभुपाद ने कहा, वन रास्कल हैज रिटन दैट कृष्णा वाज किल्ड बाय हंटर। तो किसी ने बोला, प्रभुपाद यस, राजगोपाल आचार्य हैज रिटन इन हिज कमेंट्री टू महाभारत, वन चैप्टर इज एंटाइटल्ड कृष्णा पासेस अवे। महाभारत में एक चैप्टर जो है लिखा है राजगोपाल आचार्य ने कि कृष्ण का क्या हो, कृष्ण की मृत्यु हो गई। किसके द्वारा? शिकारी के द्वारा। यानी कि शिकारी ज्यादा शक्तिशाली था कृष्ण से। फिर वहां एक भक्त है, प्रभुपाद से बोलते, प्रभुपाद आपने एक बार ये भी बताया था कि कई अगर शिकारी अगर कोई बाण चलाता भी अगर पांव में लगता है तो मरने की संभावना कम होती है। अगर कोई आपके पांव में मारे तो थोड़ा मर जाओगे आप, ज्यादा से ज्यादा आपका पांव कटेगा। तो वैसे भी ये ठीक नहीं बात है ना। तो प्रभुपाद कहते हैं कि वास्तव में इसलिए भगवान चाहते हैं कि जो मूर्ख है ना, वो जन्म जन्मांतरों तक मूर्ख ही बने रहे। इसलिए ऐसे लोगों के लिए भगवान इस प्रकार की लीला करते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं, राजगोपाल आचार्य और उसकी जो कंपनी है, वो जन्म जन्मांतरों तक अंधकार में रहेंगे। इस तरह से प्रभुपाद बता दें। तो ये सब जो है प्रभुपाद की वाक्पटुता है। सिद्धांत को, यानी कितने घुयतम सिद्धांत को, गहरे से गहरे सिद्धांत को बहुत ही सरल भाषा में प्रस्तुत कर देना, एलोक्वेंस जिसको कहते हैं, वो प्रभुपाद में था। फिर प्रभुपाद कहते हैं, फिर भगवान ने गीता में क्यों कहा, मनुष्यानाम सहस्रेशु कश्चित यतति सिद्धे यतताम अपि सिद्धानाम कश्चित मामेति तत्वता। अगर इतना आसान है जानना तो सब जान जाएंगे। फिर भगवान की लीला को समझना इतना आसान है तो उसके लिए तो भक्त बनना पड़ेगा आपको, भक्त्यामाम अपि जानाति, तो ये लोग क्या समझेंगे। तो प्रभुपाद के उत्तर इस तरह से होते थे ताकि हम लोग अच्छी तरह से समझें। सुपंडित, जब कोई व्यक्ति अत्यधिक शिक्षित होता है और दृढ़तापूर्वक नैतिक नियमों के अनुसार कार्य करता है तो वह परम विद्वान कहलाता है। ज्ञान के विभिन्न विभागों में दक्ष व्यक्ति शिक्षित कहलाता है, और क्योंकि वह नैतिक नियमों के अनुसार कार्य करता है अतः नैतिक रूप से पुष्ट माना जाता है। ये दोनों गुण मिलकर विद्वत्ता कहलाते हैं। सांदीपनि मुनि ने यहां कृष्ण द्वारा शिक्षा ग्रहण करने का वर्णन नारद मुनि से ने इस प्रकार किया है, प्रारंभ में ब्रह्मा तथा अन्य लोग उन बादलों की तरह हैं जो कृष्ण रूपी महासागर के जल की भाव से बनते हैं। दूसरों शब्दों में, ब्रह्मा ने अपनी प्रारंभिक वैदिक शिक्षा कृष्ण से प्राप्त की, जिस तरह सारे बादल समुद्र से जल प्राप्त करते हैं। फिर ब्रह्मा ने जो वैदिक शिक्षा विश्व को दी और उससे सांदीपनि मुनि रूपी पर्वत का आश्रय प्राप्त हुआ। सांदीपनी मुनि द्वारा कृष्ण को दिए गए उपदेश पर्वत के उस जलाशय की भांति हैं, जो नदी के रूप में बढ़कर पुनः अपने स्रोत कृष्ण रूपी सागर से मिलने जाते हैं। अधिक स्पष्ट करने पर भाव यह है कि कृष्ण को कोई शिक्षा नहीं दे सकता। जिस प्रकार सागर अन्यत्र स्रोत से जल ना लेकर अपने ही स्रोत से जल ग्रहण करता है, केवल ऐसा लगता है कि नदियां समुद्र में जल उड़ेल रही हैं। अतः स्पष्ट है कि ब्रह्मा ने अपनी शिक्षा ग्रहण कृष्ण से प्राप्त की और शिष्य परंपरा द्वारा ब्रह्मा से ये वैदिक विद्या वितरित हुई। सांदीपनी मुनि उस नदी के तुल्य हैं जो पुनः उसी मूल कृष्ण रूपी सागर की ओर बहती है। क्या वर्णन किया, देखिए तो कृष्ण सागर के समान है, है ना। और जो परंपरा में जो आचार्य लोग हैं वो नदियों के समान है, तो उसी सागर में जाके मिल रहे हैं, लेकिन एक नहीं हो जाते हैं, फिर भी उनका अपना अस्तित्व बना रहता है। सिद्धगण अर्थात सिद्ध लोक के निवासी और ऐसी अन्य लोक के वासी चारणगण कृष्ण से इस तरह प्रार्थना करते हैं, हे गोविंद, विद्या की देवी 14 प्रकार के शिक्षा विषयक आभूषणों से सुसज्जित है। उसकी बुद्धि चारों वेदों में सर्वव्याप्त है। उसकी दृष्टि सदैव मनु जैसी मुनियों द्वारा प्रदत्त विधि ग्रंथों पर रहती है और वह 6 प्रकार के दक्ष ज्ञान से अर्थात न्याय व्याकरण फलित ज्योतिष चंद निरक तथा तर्क से विभूषित है। वेदांग पुराण उसके नित्य सखा है और वह समस्त विद्याओं के अंतिम निर्णय से अलंकृत है। अब उसे पाठशाला में अपने सहपाठी के रूप में आपके साथ बैठने का अवसर मिला है और वह आपकी सेवा में लगी हुई है। कृष्ण को किसी प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, किंतु विद्या की देवी को अपनी सेवा करने का अवसर प्रदान करते हैं। आत्मनिर्भर होने के कारण कृष्ण को किसी जीव से सेवा कराने की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि उनके अनेक भक्त हैं, किंतु वे इतने उदार एवं कृपालु हैं कि वे हरेक को अपनी सेवा करने का अवसर देते हैं, मानो उन्हें अपने सारे भक्तों से सेवा कराने की आवश्यकता हो। तो ऐसा लगता है कि कृष्ण हमारे ऊपर निर्भर है और हमसे सेवा लेना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में वो निर्भर नहीं है, वो क्योंकि पूर्ण है। और जिस तरह से हम देखते हैं कि गौरलीला में भी किस तरह निमाई पंडित ने केशव काश्मीरी का परास्त किया, है ना, केशव काश्मीरी को परास्त किया। केशव काश्मीरी दिग्विजय था, पहली बार वो नवदीप आया था। दिग्विजय का मतलब है जिसने चारों दिशाओं के ऊपर विजय पाली हो, सारे विद्वानों को हरा दिया उसने। और उस समय वहां पर नवदीप में ब्राह्मणों ने सभा बुलाई, उन्होंने सभा में चर्चा की कि केशव काश्मीरी आने वाला है, हम हार जाएंगे तो नाक कट जाएगी हमारी। ये निमाई अपने आप को हमेशा पंडित कहता है और हमारा मजाक उड़ाता है, इसी को आगे रखते हैं। अगर ये हरा देगा तो हम बोल सकते हैं कि ये बच्चे ने हरा दिया, फिर हमारे बारे में क्या कहना। और ये हार जाएगा तो क्या कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे को हराया, है ना। अभी हमसे तो बात नहीं की, ये तो केवल बच्चे को हराया है। तो इस प्रकार हम दोनों तरह से विजयी माने जाएंगे, हमें निमाई को आगे रखना होगा। तो उस समय गंगा जी के तट पर निमाई अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे और केशव काश्मीरी बहुत सारे संख्या में शिष्यों के साथ आया था बड़े ऐश्वर्य से, और वहां पर आके पहुंचा और निमाई को चुनौती दी कि मैंने तुम्हारे बारे में सुना है बहुत, नवदीप में तुम पंडित के रूप में जाने जाते हैं, मेरा नाम केशव काश्मीरी है, मैं दिग्विजयी हूं, मैं चाहता हूं कि तुम उसे शास्त्रार्थ करो। बोलते आप तो मुझसे बड़े हैं, आपने तो चारों दिशाओं पर विजय पाई है, आप जैसे विद्वान कौन हो सकता है, मेरी इच्छा कि सबसे पहले आप कुछ बताएं, गंगा जी के बारे में ही कुछ वर्णन करें। तो केशव काश्मीरी ने कुछ ही मिनटों में क्या किया, 100 श्लोकों की रचना कर दी गंगा जी की प्रशंसा में, और निमाई जो है चुपचाप सुनते रहे। और केशव काश्मीर ने कहा कि मैंने इतनी देर तक बोला लेकिन तुमने अभी तक कुछ कहा ही नहीं। तो निमाई कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं तो मैं बोल सकता हूं। तो जो जो श्लोक उन्होंने बोले थे गंगा जी की प्रशंसा में, हर श्लोक में निमाई ने गलती निकालना शुरू किया। उन्होंने कहा एक जगह आपने बताया है कि आपने भवानी भर्तु करके शब्द का उपयोग किया है, भवानी का अर्थ यही है कि जो शिव जी की पत्नी है उनको भवानी कहा गया है, और भवानी भर्तु का क्या मतलब होता है, शिव जी की पत्नी उनके पति, यानी कि उनके दो पति हैं। तो इस तरह से निमाई जो है हर श्लोक में उन्होंने गलती निकाली। केशव कश्मीरी हैरान हो गया, उसके शरीर से पसीना निकलने लगा, और उसके बाद केशव काश्मीरी सोचने लगा क्या करूं, चारों तरफ ये लड़के हंस रहे हैं। निमाय ने कहा चुप, कोई नहीं हंसेगा, ऐसा करो अभी आप जाओ, आप सरस्वती जी से प्रार्थना करो, कल मिलेंगे फिर से, हम थोड़ा और विचार करिए आप। तो फिर वो घर गए और उन्होंने सरस्वती से प्रार्थना की, उन्होंने कहा कि हे देवी ये क्या हुआ, आप तो हमेशा मेरे जीव में निवास करते हैं, जब भी मैं बोलता हूं आज तक कभी मैं हारा नहीं, लेकिन एक छोटे से बालक ने मुझे हरा दिया, मेरी नाक कट गई, मैं आप तो, आपका अनन्य भक्त हूं, ये क्या हुआ। तो फिर उन्होंने दर्शन दिया, देखो बालक ये निमाय कोई साधारण बालक नहीं है, ये स्वयं मेरा भी स्वामी है, ये स्वयं नारायण है, इनके साथ क्या युद्ध कर रहे हो, इनके साथ क्या वार्तालाप कर रहे हो, समय बर्बाद मत करो, याचक की बात ही जाओ, सबको त्याग कर और वहां पर साष्टांग दंडवत करो, उनसे भीख मांगो, कृपा की भीख मांगो, उनकी शरण लो, उनकी स्तुति करो, यही असली विद्या है। तो अगले दिन फिर क्या हुआ, याचक की भांति आए केशव काश्मीरी, सबको त्याग कर बिल्कुल अकेले आए, साष्टांग दंडवत किया निमाय को। लेकिन निमाय की महानता यह थी, महाप्रभु की महानता यह थी कि जैसे केशव काश्मीरी ने शरण ली तो निमाय पंडित ने क्या किया, केशव काश्मीरी की प्रशंसा की कि वास्तव में ये बहुत बड़े विद्वान है, लेकिन मैं चाहता हूं कि अपने विद्वत्ता के द्वारा आप भगवान की प्रशंसा करो। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी गए थे और सार्वभौम भट्टाचार्य से मिले थे, तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने लगातार एक हफ्ते या दस दिन, एक हफ्ते के लिए उन्होंने वेदांत सूत्र के ऊपर व्याख्या की, वेदांत सूत्र के ऊपर, तो वेदांत सूत्र के ऊपर व्याख्या की। तो चैतन्य महाप्रभु से पूछा कि मैं सात दिन से बोल रहा हूं और तुम कुछ कह ही नहीं रहे, ना तुम्हारा कोई प्रश्न है ना कोई समीक्षा है, या तो तुम्हें कुछ समझ नहीं आया तो पूछो, या कुछ कहना चाहते हो तो कहो, ये चुप रहने का क्या मतलब है। अब देखिए उनकी महानता देखिए, नम्रता देखिए। फिर सार्वभौम भट्टाचार्य जो है नीलांबर चक्रवर्ती के मित्र रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि आप इतने वृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं, विद्वान हैं, आपसे मेरे से बड़े हैं, मैं आपके सामने क्या बोल सकता हूं, लेकिन आप चाहते हैं मैं कुछ कहूं तो मैं कहता हूं। कि उन्होंने कहा कि जिस तरह से बादल जो है सूरज को ढक देता है, उसी तरह से आपने वेदांत सूत्र को ढक दिया अपने भाषा से। तो वेदांत सूत्र तो मुझे समझ में आ गया, लेकिन जो आपने उसके ऊपर टीका दी है वो मुझे नहीं समझ में आया। वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि सूर्य को बादलों ने ढक दिया हो, आपने तो अपने मायावाद भाष्य से सूर्य को ढक दिया है, असली ज्ञान को ढक दिया है। तो फिर उसके बाद सार्वभौम भट्टाचार्य हैरान हो गए इस बात को सुनकर, उन्हें श्रीमद् भागवत का एक श्लोक उदित किया, आत्मारामश्च मुनयो निर्ग्रंथ अपि अनुक्रमे कुर्वन्ति अहित किं भक्ति इत्थं भूतो गुणो हरि। तो इसका उन्हें नौ प्रकार से इसकी व्याख्या की सार्वभौम भट्टाचार्य ने। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम भी इसकी व्याख्या करो। तो फिर महाप्रभु ने इसकी व्याख्या 18 तरीके से की, 18 तरीके से। जब चैतन्य महाप्रभु ने इसकी व्याख्या 18 प्रकार से की तो सार्वभौम भट्टाचार्य दंग रह गए। उन्होंने कहा कि सृष्टि का कोई जीव जो इस प्रकार व्याख्या नहीं कर सकता इस श्लोक की, आप तो निश्चित रूप से स्वयं नारायण है। तो उसके बाद फिर चैतन्य महाप्रभु को षड्भुज रूप दिखाया, और बाद में हम जानते हैं कि कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी की प्रार्थना पर सनातन गोस्वामी को 61 प्रकार से श्लोक की व्याख्या की। चरितामृत में इसका वर्णन किया गया है, मध्य लीला में 61 तरीके से व्याख्या की। तो यहां पर यह बताया है कि सुपंडित, कि भगवान जैसे विद्वान कौन हो सकते हैं, है ना। तो इसलिए जो कृष्ण को जानते हैं वो सब कुछ जानते हैं। प्रभुपाद इसलिए कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा वैज्ञानिक नहीं हूं, मैं वैज्ञानिक ही नहीं हूं, आई एम नॉट अ साइंटिस्ट, लेकिन जो कृष्ण को जानता है वो सब कुछ जानता है। प्रभुपाद कहते हैं अगर ये विद्वान, ये वैज्ञानिक लोग अगर इतने बुद्धिमान हैं तो मेरे शिष्य क्यों बन रहे हैं, ये वैज्ञानिक लोग इतने बुद्धिमान हैं तो मेरे शिष्य क्यों बन रहे हैं। जैसे एक बार किसी ने कहा कि प्रभुपाद एक वैज्ञानिक वो रिसर्च कर रहे हैं, वो क्या करेंगे, शरीर से खोपड़ी हटाएंगे और खोपड़ी को अलग रखेंगे, वो खोपड़ी भी काम करेगी, दिमाग भी काम करेगा, ब्रेन भी काम करेगा और शरीर भी फंक्शन करेगा। तो प्रभुपाद कहते हैं ऐसा करते हैं, सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट उसी के साथ करते हैं। आगे चलकर क्या होगा ये तो बात की बात है। अभी उसके साथ पहला एक्सपेरिमेंट उसी के साथ करते हैं, है ना। हाँ, खोपड़ी हटा के। तो इसलिए प्रभुपाद की विद्वत्ता ये थी, प्रभुपाद निष्कर्ष जानते थे कि वास्तव में जो कृष्ण को जानता है सब कुछ जानता है। इसलिए प्रभुपाद देखिए भौतिक दृष्टिकोण से इतने विद्वान ना हो, लेकिन क्योंकि वो कृष्ण को जानते थे इसलिए बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े दार्शनिक, बड़े बड़े वैज्ञानिक, उन्होंने प्रभुपाद का आश्रय लिया, प्रभुपाद की शरण ली। वो इस तरह से ये गुण जागृत होते हैं। यहां पर साथ साथ हम लोग विषय और आश्रय दोनों की ही चर्चा कर रहे हैं, इससे पता चलता है कि किस तरह से भक्तों में भी ये गुण प्राप्त हो जाते हैं। और श्रील प्रभुपाद जो नित्य परिकर हैं, नित्य सिद्ध जीव हैं, उनमें तो 55 दिव्य गुण पाए जाते हैं। जो साधन सिद्ध भक्त हैं, जैसे हम लोग अगर साधन सिद्ध बनते हैं तो अधिक से अधिक 50 दिव्य गुण प्राप्त करेंगे, लेकिन जो नित्य परिकर हैं, श्रील प्रभुपाद जैसे आचार्य हैं, उनके पास 55 दिव्य गुण होते हैं। ये है उनकी वाक्पटुता। और सुपंडित जैसे यहां पर बताया गया, तो यहीं पर हम विराम देते हैं आज के लिए, यहां तक काफी है। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है किसी का? जी नेत्रों को बरबस आकृष्ट करने वाले सुंदर शारीरिक अंग रुचिर कहलाते हैं। अब अंग्रेजी में क्या दिया पता नहीं, हिंदी में तो ऐसा दिया रुचिर, नेक्टर डिवोशन में इंग्लिश में देखिए क्या दिया, मतलब एक एक अंगों का जब दर्शन कर रहे हैं, कृष्ण के मुख का दर्शन कर रहे हैं, उनके नेत्रों का दर्शन कर रहे हैं, उनके हाथों का दर्शन कर रहे हैं, उनके नाभि का दर्शन कर रहे हैं, उनके हाथों पांवों का दर्शन कर रहे हैं, ये कमल सदृश है। मतलब रुचिर का मतलब ये है कि उनको देखने से फिर कुछ और देखने का मन नहीं करता है, उन्हीं को देखने में रुचि रहती है सिर्फ, बस यह है इसका मतलब। और उसका कारण बताया है कि अलग अलग अंग जो है कृष्ण के वो कमल सदृश है। सिंगिंग नॉट लाइक यू, कृष्णा इज सिंगिंग बट नॉट लाइक यू एंड मी। कृष्णा इज सिंगिंग लाइक कृष्णा, ठीक है। टॉप फ्लोर फर्स्ट फ्लोर क्या भेद है ना, भेद रहता हमेशा रहता है, हमेशा रहेगा भेद। वो नित्य सिद्ध है, हम साधना सिद्ध है, यही भेद है। अभेद यह है कि दोनों सिद्ध हैं, ये अचिंता भेद अभेद है। नित्य सिद्ध का मतलब है जिनके ऊपर कभी भी माया का प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे प्रभुपाद ने कहा माया कैन नॉट टच मी, प्रभुपाद ने कहा है। प्रभुपाद ने एक चिट्ठी में लिखा 1967, कृष्ण पंडित को एक चिट्ठी लिखी है, चिबीबाड़ा मंदिर के जो इंचार्ज थे। प्रभुपाद लिखते हैं कि वास्तव में जब अभी हार्ट अटैक हुआ है, मेरा मिशन भी पूरा नहीं हुआ है, मैं जानता हूं कि माया का प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़ सकता है, माया कैन नॉट टच मी, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ माया, प्रभुपाद लिख रहे हैं। मुझे माया से डर नहीं है, माया मेरे ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकती है, लेकिन मेरा भी आंदोलन, मेरा जो मिशन है वो पूरा नहीं हुआ है। तो नित्य सिद्ध परिकर जो होते हैं उनके ऊपर माया का प्रभाव पड़ता ही नहीं, लेकिन जो हमारा तटस्थ शक्ति जीव है हम माया के प्रभाव में आ जाते हैं। लेकिन साधना भक्ति के द्वारा, साधना के द्वारा हम साधन सिद्ध बन सकते हैं, अंतर तो है। हाँ जी, पांच दिव्य गुण यहां पर हमने बताए थे, जो भगवान में पाए जाते हैं और आंशिक रूप में जीव में भी पाए जाते हैं। हाँ जी वही बता रहे हैं, पांच अतिरिक्त दिव्य गुण जो हैं परिवर्तन रहित, और उसके बाद है सर्वज्ञ, चिर नूतन, उसके बाद है सच्चिदानंद, और आखिरी समस्त योग सिद्धियों से युक्त। ये आंशिक रूप में नित्य परिक्रम में पाए जाते हैं। प्रभुपाद से पूछा कि आपके शिष्य इतने सारे हैं पूरे विश्व में, आप जानते हैं, आपको पता है कि वो सब नियमों का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आप अकेले हैं, आपके शिष्य तो कहां कहां पर हैं पूरे विश्व में, आपको पता है वो नियमों का पालन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? प्रभुपाद ने कहा मैं एक एक को जानता हूं क्या कर रहा है। इसको कहते सर्वज्ञता। सर्वज्ञता की मात्रा कम होती है, आंशिक रूप में होता है। सच्चिदानंद का मतलब यह है कि काफी लंबे समय तक उनकी आयु रहती है। सच्चिदानंद का मतलब यहां पर वो सच्चिदानंद नहीं है, सदैव नित्य आनंदमय शरीर वाले। आंशिक रूप में बताया ना यहां पर। उसकी चिंता आप मत करिए, आपका कार्य केवल भोग लगाना ठाकुर जी। आप सुन रहे हैं, हमारा कर्तव्य है कि भोग लगाना कृष्ण को, हमें चिंता ना करें कि दांत सॉफ्ट है तो कैसे खाते होंगे। और कुछ क्या समय हो गया? कहाँ चला गया मोबाइल? और कोई प्रश्न किसी का? तो ये दस गुण दिव्य गुण जो हैं आज हमने उन्हें मनन किया, भगवान कृष्ण में पाए जाते हैं और लोगों में भी पाए जाते हैं, अवतारों में भी पाए जाते हैं, देवताओं में भी पाए जाते हैं आंशिक रूप में, और जीवात्माएं जो साधन से धो जाते हैं उनमें भी ये दिव्य गुण पाए जाते हैं, आंशिक रूप में पाए जाते हैं। हरे कृष्ण। भक्ति राम सिंधु की जय। श्रील रूप गोस्वामी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंद सभी भक्तों की जय।